तो इस कथा के प्रारंभ में हमने एक श्लोक का उच्चारण किया, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव लोकम देवी सरस्वती व्यास तथो जयन्ते। तो कोई भी कथा सुनाने से पहले, और कथा कौन सी सुननी चाहिए, कथा की व्याख्या क्या है, कथई कथा जो कही जाती है उसको कथा कहते हैं। हम दिन भर में एक दूसरे के साथ बहुत सारी कथाएं करते हैं, है ना। कोई पूछता है हम उसको जवाब देते हैं, पति पत्नी से पूछता है आज क्या बनने वाला है, पत्नी बताती है आज ये बनने वाला है, पति बोलता है मेरी फरमाइश है, फिर आदमी ऑफिस में जाता है उसको बॉस उसको पूछता है तुमने क्या काम किया, मैंने वो जो काम किया उन्होंने पूरा किया कि नहीं, ये सब प्रश्नोत्तरी चलती रहती है। तो शरीर से संबंधित जितनी भी ये वार्तालाप है इन सबको ग्राम की कथा कहते हैं। तो ये संसार चक्र को बढ़ाने वाली ये ग्राम की कथा जो है, जो भी हम यदि शरीर के संबंधित कथाएं भी यदि करते हैं तो हमारे संसार चक्र को बढ़ाते रहते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहता है, ये हमारा भवरोग है। तो इससे मुक्त होने के लिए भवोशली शास्त्र उठाई है, भवोशली है हरि कथामृत। एक कथा का तो वर्णन किया ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा में बहुत सारी वैरायटी है, पॉलिटिकल लीडर अपने भाषण देता है, टीवी पर कमेंटेटर अपनी क्रिकेट कमेंट्री देता है, नॉवलिस्ट अपने नॉवल लिखता है, ऐसे अनेक प्रकार की कथाएं हैं। ग्राम्य कथाओं का आपको कोई अंत ही नहीं। तो वो सब कथाएं सुनकर, वो कथाएं जितनी भी है वो सब विषमयी है। विषमयी क्यों, क्योंकि वो विषय से संबंधित है, विषय अर्थात भौतिक पदार्थ, भोग्य पदार्थ, ये सब विषय। तो चूंकि विषय विषमयी है इसलिए वो कथा का श्रवण करने से हमारा भवरोग और तीव्र होता रहता है। बात समझ में आ रही है, हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं, हिंदी समझ में आ रहा है, मुझे मराठी नहीं आती, मुझे गुजराती हिंदी और इंग्लिश आता है, तीन भाषा में से एक भाषा में प्रवचन दे सकता हूं। तो प्लीज आप लोग, मुझे बताया गया कि आप सब लोग टीवी देखने में एक्सपर्ट हो इसलिए आप लोगों की हिंदी भी अच्छी है, ऐसा मुझे बताया गया, इसलिए मैं हिंदी में प्रमोशन दे रहा हूं। हालांकि मेरी हिंदी टीवी में जो आप हिंदी सुनते हैं उसके साथ मैच नहीं करेगी, क्योंकि आजकल जो हिंदी लोग बोलते हैं वो उर्दू मिश्रित होती है ना, उसमें उर्दू अधिक होता है, उर्दू शब्द अधिक होता है, और मैं जो हिंदी बोल रहा हूं उसमें संस्कृत शब्द अधिक आएंगे, वो हमारी भारतीय प्रणाली। तो ग्राम्य कथा सुनने से हमारा भवरोग बढ़ता रहता है। भव माने जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसको भव कहते हैं, और ये जीवात्मा का रोग है। इस रोग से मुक्त करने के लिए भगवान ने अनेक प्रकार के उपाय किए हैं, खास करके कली के लोगों के लिए श्री हरि ने, जैसे हमने इस रोग में बताया नारायण नरम चेव देवी सरस्वती व्यास हो जाए। कलयुग के दुख के लिए श्री हरि ने वेदव्यास को भेजा, वेदव्यास का नाम सब लोगों ने सुना है ना, भारत देश में यदि वेदव्यास का नाम नहीं सुना है तो फिर वो बहुत शर्म की बात है, भारत में जन्म लेने के बाद यदि व्यासदेव के बारे में नहीं पता है तो बहुत शर्म की बात है। तो वेदव्यास ने कलयुग के आरंभ में, कलयुग से पूर्व ही वेदों का विस्तार कर लिया था, वेदों का विभाजन किया, फिर उसका विस्तार किया, वेदों का सार उन्होंने महाभारत में ले लिया, इसलिए महाभारत को छांदों के उपनिषद में पंचम वेद बोला। उपनिषद कितने हैं आप में से कोई बताओ, उपनिषद कितने हैं, 108। वेद में कितने कांड है, तीन कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, उसमें से ज्ञान कांड जो है वो उपनिषद है, ठीक है। तो वेदों का जो मुख्य, जिसमें वैराग्य बुद्धि, वैराग्य बुद्धि बताई है वो उपनिषदों में, उन सब उपनिषदों का सार है भगवद्गीता। 108 उपनिषद का सार है भगवत गीता, इसलिए भगवत गीता को क्या कहते हैं, गीतोपनिषद। उसी प्रकार से महाभारत वेद कितने हैं, चार वेद, नाम सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, उन चारों वेदों का सार महाभारत में ले लिया गया है, इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहा गया। और फिर उसके अलावा वेद व्यास ने 18 पुराण भी रचे, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है पुराणों में, श्रीमद् भागवत पुराण, जिसको पारमहंस संहिता भी कहते हैं, परमहंसों की संहिता, और उसको वेदांत ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहते हैं, क्योंकि वेद व्यास ने जो वेदांत सूत्र की पट्टिका लिखी वो भागवत के रूप में लिखी, इसलिए उसका जो प्रमाण है वो भागवत में ही दिया कि भागवतम जो है वो ब्रह्मसूत्र के बारे में भाष्य है, ब्रह्मसूत्र भाष्य है, उसका प्रमाण भागवत पुराण नहीं आता है। क्यों, पहला ब्रह्मसूत्र क्या है, वेदांत सूत्र में एक आता है जन्मा कैसे, तो भागवतम का पहला ही श्लोक, भागवतम का पहला जो है वो मंत्र है, उसको गायत्री मंत्र कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है जन्मा सूत्र। वेदांत सूत्र और भागवतम दोनों में एक सेम सूत्र है, उसी से पता चलता है कि भागवतम जो है वो ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य है वेद व्यास। तो हम लोग बात करें महाभारत की, महाभारत का नाम सब लोगों ने सुना है ना कि नहीं सुना है, किसने महाभारत का नाम नहीं सुना है, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने महाभारत का नाम नहीं सुना है, क्योंकि टीवी पर बिहार चक्रवर्ती क्या महाभारत देखा होगा सब लोगों ने। तो उसको पंचम वेद खास करके बोला गया क्योंकि इसमें वेदों का सार बता दिया गया है। तो इस पंचम वेद का कीर्तन करने से पहले या श्रवण करने से पहले हमें चार व्यक्तियों को प्रणाम करना चाहिए, कौन कौन, नारायण नमस्कृत, सबसे पहले नारायण को प्रणाम करना चाहिए, यहां तो नारायण विराजमान है, लक्ष्मी नारायण विराजमान है यहां पर, ऑफकोर्स हम लोग जिस नारायण की बात कर रहे हैं वो यही है क्योंकि दूसरे रूप में है, कौन से, बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि, नर नारायण ऋषि का नाम सुना है ना, तो नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम, नारायण को प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, फिर दूसरे कौन से, नरम चैव नरोत्तम, नर में उत्तम नर यानी कि अर्जुन, नारायण श्री कृष्ण है, नर है वो है अर्जुन है, तो इन दोनों को नमस्कार, नारायण नमस्कृत, लेकिन हम कृष्ण अर्जुन के उस रूप को पहले प्रणाम कर रहे हैं जो बद्रिकाश्रम में सभी को कल्याण करने के लिए नित्य रूप से तपस्या करते रहते हैं, नर नारायण ऋषि, नारायण नमस्कृत नरम चैव देवी सरस्वती व्यासम, फिर तीसरे कौन है, सरस्वती देवी, सरस्वती देवी कौन है, विद्या की देवी, उन्हीं की कृपा से हम लोग श्री हरि के बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सरस्वती देवी उनको नमस्कार। और फिर अंत में पराशर या पराशर नंदन वेद व्यास उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास इतने अनगिनत वैदिक साहित्य है। तो वेद व्यास है जिसको पराशर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये पराशर के पुत्र हैं, पराशर जो बहुत बड़े महर्षि थे उनके पुत्र व्यास थे, उनका एक नाम पराशर भी है या सत्यवती नंदन भी है क्योंकि वो सत्यवती के पुत्र हैं। तो आप इनको पहले नमस्कार, क्योंकि इन्हीं की कृपा से ये जो वेद व्यास है वो भगवान श्री हरि की कृपा मूर्ति है, यदि वेद व्यास नहीं होते तो हम लोग इस कल के अंधकार में भटकते रहते हैं, इधर उधर हमें कुछ दिशा का भान नहीं होता, हमें अपना जीवन का उद्देश्य पता नहीं चलता यदि वेद व्यास नहीं होते। इसलिए वेद व्यास ने बड़ी कृपा करके सब वेदों का सार हमें महाभारत के रूप में दे दिया। महाभारत देने का उद्देश्य यह था कि कलयुग के लोग जो वेदों की जटिल भाषा को नहीं समझ सकते, वेदों के ज्ञान से वंचित ना रहे, है ना। कलयुग में कौन वेद जानता है, वेद को पढ़ना, वेद को समझना बड़ा मुश्किल है, और वैसे भी वेद केवल ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। क्षत्रिय और वैश्य अपने अपने वर्णोचित ज्ञान ब्राह्मण से प्राप्त करते हैं, लेकिन वेदों का स्पर्श केवल ब्राह्मण कर सकता है, और कलयुग में ब्राह्मण बचे ही नहीं। कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सभी शूद्र है, शूद्र होने वाले हैं, वेद व्यास को बोला था। इसलिए वेद व्यास ने बड़ा अनुग्रह करके उन वेदों का साथ महाभारत में दे दिया। तो महाभारत जो है वो खास करके स्त्री शूद्र और विजयबिंदु के लिए है। आज कलयुग में ये तीन लोग ही पाए जाते हैं, स्त्री शूद्र, स्त्री तो स्त्री समझ गए, शूद्र अर्थात ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्र, जो जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें से अंतिम पर्सन शूद्र। जो शूद्र की व्याख्या क्या है, जो दुनियावी वस्तु के लिए हमेशा शोक करता रहता है, छोटी छोटी चीजों के लिए शोक करता है, रोता रहता है, उसको शूद्र कहते हैं। और तीसरे द्विजबंधु, द्विजबंधु अर्थात ब्राह्मण क्षत्र वैश्य, इनको द्विज कहते हैं। उपनय संस्कार किसके किसके होते हैं, ब्राह्मण क्षत्र वैश्य इनके उपवित संस्कार होते हैं, इनके जनेऊ धारण करते हैं। और फिर उनकी वो विधि होने के बाद गुरु के आश्रम में जाना होता है, और वहां पढ़ाई करनी होती है गुरु के आश्रम में, तो गुरु के द्वारा उनका दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म किससे होता है, माता से, और दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्र वैश्य को बीज कहते हैं, दो जन्म वाले। उसमें से श्रेष्ठ है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण को द्विज श्रेष्ठ भी कहते हैं। तो द्विजबंधु, द्विजबंधु अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्र वैश्य के कुटुंब में पैदा हुआ है, लेकिन उसके गुण उस वर्णोचित नहीं है। अर्थात ब्राह्मण कुटुंब में पैदा होने वाला व्यक्ति जो है उसके अंदर ब्राह्मण उचित गुण नहीं है, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। क्षत्रिय कुटुंब में पैदा होने वाला के पास क्षत्रिय के गुण यदि नहीं है उसको क्षात्र बंधु कहते हैं। उसी प्रकार से वैश्य बंधु, वैश्य कुटुंब में पैदा होने के बावजूद भी वो शूद्र की तरह व्यवहार करता है, उसको वैश्य बंधु कहते हैं। जो तीनों है इसको द्विज बंधु कहते हैं। कलयुग में ऐसे ही सब लोग, स्त्री शूद्र द्विज बंधु, कलयुग में ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। इसलिए वेद व्यास ने बड़ी कृपा करके, बड़ी दया करके वेदों का साथ महाभारत के रूप में दे दिया। तो एक महाभारत में 1,00,000 से अधिक श्लोक है, 18 पर्व है। उसमें से आज मैं आपको एक कथा सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो आदि पर्व के अंतर्गत, सबसे पहला महाभारत का पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व के अंतर्गत बहुत सारे उप पर्व भी है महाभारत में, हर एक पर्व में ऐसा 18 पर्व में अंदर अंदर उप पर्व है, पर्व के अंदर पर्व। उस उप पर्व में बहुत सारे उपाख्यान भी है। तो आदि पर्व के अंतर्गत है एक आस्तिक पर्व। आस्तिक पर्व के अंतर्गत गरुड़ की कथा आती है। तो मैं गरुड़ के बारे में सब लोग जानते हैं, गरुड़ का नाम सब लोगों ने सुना है, गरुड़ सब जानते हैं ना, कोई बताए गरुड़ कौन है, आप बताइए गरुड़ कौन है दूसरी लाइन में, अंकल गरुड़ जी कौन है, गरुड़ कौन है, हाँ क्या आपको सुनाई दे रहा है, जटायु। अरे ये तो आपने नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह को ही बता दिया, जटायु अलग है, गरुड़ अलग है, पीछे गरुड़ कौन है, हाँ पक्षी, लेकिन विशेष पक्षी, पक्षी तो बहुत सारे आकाश में, लेकिन ये पक्षी ऑर्डिनरी नहीं है, बड़ा पक्षी है, लेकिन इसका उसका रोल क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, गुरु की पोजीशन क्या है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बैठे हैं हम लोग, तो नारायण के बाद है गरुड़, विष्णु के बाद है ना गरुड़ जी, नहीं है, है ना। तो गरुड़ क्या है, विष्णु के बाद, अर्थात ये वैष्णव है, गरुड़ जी वैष्णव है। वैष्णव जो नहीं होता है वो भगवान का बाहन कैसे कर सकता है। और ये एक वैष्णव ऐसा है मांसाहार करता है, वैष्णव कोई मांसाहार कर सकते क्या? वैष्णव को बताया ना, नो मीटिंग पहला ही रूल, नो सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, चार नियम। लेकिन ये मनुष्यों के लिए, गरुड़ जी मनुष्य नहीं है, ये पक्षीराज है, पक्षियों का इंद्र है ये, इज अ नॉन वेजिटेरियन वैष्णव। वो नॉन वेजिटेरियन है फिर भी शुद्ध वैष्णव है, फिर भी शुद्ध भक्त है, उनका चरित्र महान है, पराक्रम महान है। तो उनकी कथा महाभारत में दी है, विस्तार से बताई है, उनके बल पराक्रम के बारे में वर्णन किया। तो हम लोग पहले भव लोक की बात कर रहे थे, कमिंग टू दैट पॉइंट, हम सब लोगों को हरि कथा का पान करना चाहिए, क्योंकि भवरोग का एंटीटोड यानी कि उसका उपाय, उसकी दवाई, भवरोग की दवाई है हरि कथा। हरि कथा अमृत नाम रसायन या हरि कथा रसायन, उसका पान हमें करना चाहिए। वो पान किससे करेंगे, मुंह से? रस का पान तो मुंह से करते हैं ना, तो फिर ये कथा का पान क्या मुंह से करेंगे? नहीं, कान से करेंगे। ये भगवान की कथा, ये जो रसायन है, इसका पान हमें कान से करना है। भगवान ने एक मुंह और दो कान दिए हैं, क्यों? कम बोलो ज्यादा सुनो। भगवान ने बोला है जितना बोलो उससे डबल सुनो। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। अर्जुन बोलते हैं सत्कथा श्रवणीय, नारद जी के वार्तालाप चल रहा है उनका। नारद जी को रिक्वेस्ट किया अर्जुन ने, कुछ कुछ कथा का प्रसंग यहां नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। तो नारद जी कुछ विस्तार से हरि कथा का कुछ वर्णन टालना चाहते, संक्षेप में सुना लिया चंद्रहास के बाद, वो कथा में सुनाने वालों चंद्रहास की कथा हमारे स्केड्यूल में है। तो नारद ने संक्षेप में सुना दिया, अर्जुन कहते नहीं नहीं विस्तार से सुनाओ, एक संक्षेप में नहीं चलेगा। नारद कह रहे अर्जुन तुम्हारे पास समय कहां है, युधिष्ठिर वहां यज्ञ की भिक्षा लेकर बैठे हैं, तुम्हें घोड़ा लेकर दौड़ना है वापस, तुम्हारे पास समय नहीं है। अर्जुन बोले यज्ञ हो ना हो, घोड़ा मिले ना मिले, मुझे हरि कथा सुननी। क्यों? क्योंकि सत्कथा श्रवणीय, वो कह रहे कि धरातल पर मनुष्य का आयुष्य बहुत कम है। हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा कितने साल जीते हैं? गोवा में आबोहवा अच्छी है, शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने साल जिएंगे? 100 साल। 100 साल तो कैसे बीत जाते हैं बूढ़े लोगों को पता है कि उनके 60-70 ईयर्स कैसे चले गए पता भी नहीं चलता। जैसे हाथ में आप रेत पकड़ के रखेंगे, कितना भी टाइट पकड़ो हाथ में रेत, वो रहेगी हाथ में? नहीं, वो खिसक जाएगी। उसी प्रकार से समय कैसे रह जाता पता नहीं चलता। तो इस धरातल पर मनुष्य के आयुष्य बहुत कम है, उनकी आयु बहुत कम है अर्जुन कह रहे हैं। तो इन कम आयुष्य वाले मनुष्यों के पास यदि सत्कथा सुनने का समय नहीं है तो निश्चित रूप से वो लोग आत्मकल्याण से वंचित हो गए, मतलब उन्होंने अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार ली, उन्होंने खुद को अपने आप को कल्याण से वंचित कर दिया, काल ने उनको ठग लिया। सत्कथा मानने वाली कौन सी सत्कथा? सत्कथा सत अर्थात ऐसी कथा जो सुनकर हमें शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। शाश्वत जीवन अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्ति। सत सत और असत दो है ना, सत कथा यानी जो कथा सुनने से हमें सत प्राप्त होता है, शाश्वत जीवन प्राप्त होता है, अर्थात भगवान के धाम में प्रवेश, वही वही शाश्वत जीवन। ऐसी कथा मनुष्य को सुननी चाहिए। और वो कथा सुनने से ही, वो कथा कानों से सुनने से, कान से पान करने से हमारा भवरोग मिट जाता है, हम लोग भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं, जहां सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। तो ये भी एक हरि कथा है। वेदे रामायण पुण्य भारते भरतश्व आदो चांते जी मध्य हरि सर्वत्र कीयते। वेद रामायण इतिहास पुराण के आदि मध्य अंत में केवल हरि के गुणगान गाया गया है, हरि के अलावा किसी के गुणगान नहीं है। यदि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिखता भी है कि दूसरे दूसरे देवी देवताओं की महिमा बताई है, उसका एकमात्र उद्देश्य है ये न केवल प्रकारण कैसे करके लोग को हरि के बारे में, हरि की महिमा बताने का, उनको हरि के चरणों में वापस लाकर रखने का, ये उद्देश्य था वेद व्यास का। इसलिए रामायण का इतिहास, वेद, महाभारत सभी में आदि मध्य अंत में हरि ही सर्वत्र गीयते, केवल हरि के ही गुणगान गाए गए और वो ही जीवन का परम लक्ष्य है। हरि कथा सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य जीवन में कोई नहीं है, सब भूल जाइए, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य। इसी के लिए मनुष्य ने शरीर का, भगवान ने हमें शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया हरि कथा सुनने के लिए, इसलिए भगवान ने ऐसे काम दिया है। तो इसका ये नहीं कि चलो अपने पास शाम को ट्यूजडे की शाम को कुछ था नहीं, कुछ दूसरा टाइम जो अपने कुछ फ्री बैठे थे, सुंदर बना सुनने के मनुष्य दे दिया, थोड़ा बहुत सुन के प्रसाद लेकर आ जाएंगे, नहीं, इस भाव से नहीं। ऐसी कथा को हमेशा सुनते रहना चाहिए, भक्तों के मुखारविंद से ऐसी कथाओं का नित्य स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त, जिसको मैं देखता हूं कि मेरी कथा सुनने के लिए बहुत आतुर रहता है, भगवान कह रहे प्रॉमिस कर कि जो मेरी कथा सुनने के लिए बड़ा आतुर रहता है, उसको मैं हृदय से ऐसा ज्ञान देता हूं जिसकी वजह से वो सरलता से मुझे प्राप्त कर सके। तो जब हम भगवान की कथा सुनने में हमेशा आतुर रहते हैं, जितने आतुर हम लोग प्रसाद लेने में रहते हैं, जितने आतुर हम लोग टीवी सीरियल देखने में रहते हैं, है ना, जितने आतुर हम लोग इंद्रिय भोग करने में रहते हैं, विषय भोग करने में रहते हैं, क्योंकि उसमें ही आतुर, यदि हम हरि कथा सुनने में रहते हैं तो हमारा भगवान के धाम में जाने का मार्ग सुगम हो जाता है, वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। तो दस प्राशु नित्यम भागवत सेवया, भगवत उत्तम श्लोक है भक्ति भक्ति में सुनी, ये हरि कथा का श्रवण नित्य करना चाहिए, नहीं कि कभी कभार, खाना तो हजत खाते हैं ना हम लोग, कि कभी कभार खाते हैं, दिन में तीन तीन बार खाते हैं और कुछ लोग तो पांच पांच छह छह बार खाते हैं, और वो भी नियमित रूप से, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो शरीर का पोषण नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार से ये हरि कथा का श्रवण नियमित रूप से होना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला पार्षद धाम इनके बारे में नित्य श्रवण होना चाहिए, नित्य रेगुलरली, तो फिर आत्मा का पोषण होता है। तो प्रजापति कश्यप, कश्यप की अनेक पत्नियां थी, उसमें से दो पत्नियां दक्ष की पुत्री कद्रु और विनिता, तो ये दोनों कन्याएं पूरी तरह से पतिव्रता थी, उन्होंने अपने पति की जी जान से सेवा की, उससे प्रसन्न होकर कश्यप ने उन्हें वर मांगने के लिए बोला। कद्रु ने वर मांगा 1000 सर पुत्र लीजिए। कश्यप प्रजापति की दो पत्नियां कद्रु और विनिता दोनों को बोला वर मांगो, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर। कद्रु ने बोला कि मुझे बहुत ही शक्तिशाली बलशाली पराक्रमी 1000 सर पुत्र रूप में दीजिए, 1000 सांप पुत्र रूप में दीजिए। कश्यप ने बोला एवं अस्तु मिल जाएंगे। विनिता जो उनकी बहन थी, किसकी, कद्रु की बहन विनिता, विनिता से बोला तुम वर मांगो। विनिता ने बताया कि मुझे 1000 पुत्र नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए जो सर्पों से अधिक शक्तिशाली है। कश्यप ने बोला एवं अस्तु मिल जाएंगे। तो कश्यप प्रजापति उन दोनों को वरदान दे दिया। तो जाते समय बोला कि आप दोनों ही गर्भवती हो, और आप दोनों के ही गर्भ से बहुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए अपने गर्भ को बहुत सफलपूर्वक धारण करो, इसकी रक्षा करो। ऐसा कह के कश्यप प्रजापति गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। इस तरह कद्रु और विनुता दोनों ने दीर्घकाल के पश्चात, कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनुता ने 2 अंडे दिए, तो उसमें से कद्रु ने जो अंडे दिए उसमें से समय आने पर 1000 सर्प पैदा हुए। तो फिर क्या हुआ कि कद्रु के बेटे हो गए। विनिता ने देखा यदि मेरे तो बच्चे हुए ही, कद्रु के तो आ गए, मेरी उसकी सौत है ना, सगी बहन है लेकिन सौत भी है, और सौत माने समझो को वाइफ, तो उसमें कॉम्पिटिशन स्पर्धा होती है, उस उन दोनों में सौत डहा बोलते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति कौन आगे बढ़ता है, कौन ज्यादा प्रगति करता है, दोनों में डहा होता है, सौत डहा बोलते हैं। तो विनिता को स्त्री स्वभावश वो ईर्ष्या हो गई, बोले इसके इतने 1000 पुत्र हो गए, मेरा विरक्त नहीं हुआ, 2 अंडे तो हो गए मेरे। तो फिर उसमें से उसका जो उसकी धीरज नहीं रही विनिता की, तो उसमें से 1 डंडा फोड़ दिया, तो उसमें से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका शरीर का भाग, ऊपर का भाग जो है, इसको इंग्लिश में टॉर्सो कहते हैं, कमर के ऊपर का जो भाग है वो पूरी तरह से परिपक्व था, लेकिन अंडा जल्दी जल्दी फोड़ दिया था, इसलिए नीचे का भाग डेवलप नहीं हुआ, प्रीमैच्योर डिलीवरी। तो उस कारण से ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने विनिता को शाप दिया कि जिस सौत के साथ स्पर्धा करने की वजह से तुमने मुझे एक संडे से जल्दी निकाल दिया, उसी सौत की तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। ऐसा कह के वो आकाश में चले गए और वहां आकाश में जाकर वो सूर्यदेव के साथ ही बन गए। वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ विनिता का बड़ा पुत्र जिसका नाम हुआ अरुण, वो अरुण जो है वो सूर्यदेव का साथ बन गया, उसके बारे में बाद में कथा में विस्तार से बताऊंगा, वो सूर्यदेव के साथ ही बन गए। इसलिए जब हम देखते हैं कि सूर्यदेव होता है उससे पहले क्या होता है, सूर्योदय से पहले क्या होता है, अरुणोदय होता है, वो पहले बताया था मैंने जब 2.5 साल पहले आया था कथा सुनाई थी। तो अरुण का शरीर है वो लाभ उनका है, उस कारण से सूर्यदेव के आने से पहले अरुणोदय अरुण का शरीर दिखाई देता है, उनके शरीर का तेज दिखाई देता है, इसलिए पहले सूर्योदय से पहले लालिमा छा जाती है, वो अरुणोदय है। उसके बाद अभी विनिता ने धीरज कि दूसरा जो पुत्र हुआ वो गरुड़ हुए, उसके जो दूसरे पुत्र वो गरुड़ हुए, ये संक्षिप्त में मैंने बता दिया। अभी इस दोनों ये जो दोनों का जन्म के बाद विस्तार से बाद में वर्णन करूंगा। अभी क्या हुआ कि इसी बीच में अरुण ने साथ दिया ना कि तुमने मुझे जल्दी संडे से जल्दी बाहर निकाल दिया, इसलिए 500 साल तक तुम्हें अपने सौ की दासी बनना पड़ेगा, ऐसा अरुण ने साथ दिया अपनी माँ को, ऐसे करके वो आकाश में चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि कद्रु और विनिता में एक बार शर्त लग गई, वो दोनों घूम रहे थे, इन दोनों के पास खेचरी सिद्धि थी, खेचरी सिद्धि अर्थात आकाश में उड़ सकते हैं, खा माने आकाश, आकाश में विचरण कर सकते हैं, ऐसी सिद्धियां थी दोनों के पास कद्रु और विनिता के पास। तो एक बार जहां कश्यप प्रजापति का आश्रम था, उनका घर था, तो उसके नजदीक समुद्र था, बहुत विशाल समुद्र, तो समुद्र के दूसरे तट पर गए, उसको पार करके गए, उड़ गए, उनको एयरप्लेन की जरूरत नहीं पड़ी, फ्लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे उड़ के जा सकते, खेचरी सिद्धि थी उनके पास। वो समुद्र को देखते देखते वो सामने के तट पे गए और वहां उन्होंने देवताओं का एक बहुत ही सुंदर अद्भुत अश्व देखा जिसका नाम उच्चैसवा। उच्चैसवा देवता को बहुत ही दिव्य और सुंदर घोड़ा है। वह कद्रुव मिलता ने देखा। अभी ये दोनों उसमें से कद्रु बोली चलो शर लग जाए मिलता के साथ। विनिता ने बोला शर लग जाए, मिलता समझ गए इसका भाव। विनिता ने बोला कि घोड़ा तो सफेद है, ये घोड़ा पूरा सफेद है, ऐसा विनिता ने बोला। कद्रु ने बोला नहीं, ये घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूछ काली है, शर लग जाए। ठीक है, तो कद्रु ने क्या शर्त रखी कि अरे इसकी और ये उच्च सवा घोड़ा क्या किया टिकता नहीं, वो बहुत जल्दी से आकर चला गया वहां से, बहुत तीव्र गति से चला गया। तो तुरंत वो देखकर जज करना डिफिकल्ट था, पता नहीं लगा सकते तुरंत कि वो घोड़े की पूछ काली है कि सफेद है। तो विनिता ने बोला थोड़ा घोड़ा सफेद है, कद्रु ने बोला घोड़ा सफेद भले ही हो लेकिन उसकी पूछ काली है, शर लग जाए। शर यह लगी जिसकी बात गलत होगी वो दूसरे की दासी बनेगी, ये शर लगा दी। तो विनिता ने बोला ठीक है, यदि मैं गलत हुई तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, यदि तुम गलत हो तुम मेरी दासी बन जाना। हो गया डन हो गया। और बोले दोनों निश्चय कर लिया कि अभी हम लोग कल आकर इसका निश्चय करेंगे। अभी वो अपने अपने घर चले गए वापस। अभी पीछे कद्रु को है ना बड़ा डाउट हुआ, वो जब घर गई तो उसने याद किया, उसको पता लग गया कि वास्तव में विनिता की बात सही है, वो पूरा घोड़ा सफेद था, उसकी पूंछ भी सफेद थी एक्चुअली, लेकिन उसने बोल तो दिया। तो कद्रु है ना वो कपट नीति वाली थी, वो कपट करने वाली थी, तो उसको लगा कि मैं शर्त हार जाऊंगी, इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाया। और कद्रु के जो पुत्र थे 1000 पुत्र, कौन सर, ये सर गुआ में देखने वाले ऑर्डिनरी सर थोड़ी थे, ये सब इच्छाधारी नाम थे, इच्छाधारी सांप। कद्रु की जितनी भी संतान थी 1000 सर, वो सब इच्छाधारी थे, मतलब वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो ऐसी जो बातें आपने शायद पहले पिक्चर में देखी होगी वो बात गलत नहीं है, वो सही है। ऐसे सर होते हैं जो इच्छाधारी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा महाभारत में वर्णन किया है, भागवत में भी आता है। और इन लोगों का निवास स्थान भूमंडल के नीचे 7 बिलस वर्ग है, पिछली बार वर्णन किया था ना, उन बिलस वर्ग में नाग लोग हैं, तो वहां वो रहते हैं ऐसे शक्तिशाली नाग। और फिर आते हैं कभी कभी धरातल पे भी आते हैं, कोई भी रूप धारण करके पता नहीं चलता है। तो कद्रु ने बोला इनको कि तुम काले बाल बन के उच्चैसवा की पूंछ में घुस जाना और अपनी पूंछ को काली बना, ये तो इच्छाधारी है ना, तो काले बाल का रूप धारण कर सकते हैं, परफेक्ट, कोई गलती नहीं होगी उसमें, और उसकी पूंछ को काली बना। तो उनमें से कुछ सर्पों ने मना किया, अरे माता ऐसे कैसे चले गए, गलत बात है। तो कद्रु ने उन लोगों को जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी उसको शाप दे दिया कि आप लोग पांडववंशी महापराक्रमी राजा जन्मेजय के सर्प सत्र में आहुति बनके भस्म हो जाओगे। ये भी सुनाया था पिछली बार, भूल गए। तो जन्मेजय के सत्र में सर्प सत्र में आप लोगों की आहुति कट जाएगी, उसमें भस्म हो जाओगे आप लोग। तो लोग जो जिन लोगों ने कद्रु की बात नहीं मानी और कुछ लोगों ने मान ली, फिर वो अभी क्या हुआ कि दूसरा दिन दूसरे दिन दोनों गए, चलो अपनी उच्च सभा को देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काला है सफेद है निश्चय कर लेते हैं। तो कद्रु और विनिता गए दूसरे दिन, कद्रु ने अपना काम कर लिया कपट नीति से, कुछ सब तो राजी हो गए, सामने के तट पे गए। उच्च सभा आ रहा था तो ये लोग अदृश्य होकर कौन नागलोक उसकी पूछ में काले बाल बन के घुस गए और उसको उसकी पूरी पूछ को काली बना दिया। और दोनों ने देखा इस बात को, दोनों ने देखा कि इसकी ऊंचे सभा की पूछ तो काली थी। तो कद्रु बोली वाह मैं जीत गई, जो विनिता थी वो विषाद की मूर्ति बन गई, कद्रु शायद जीत गई। उच्च सभा की कुछ गाली दिखी, विनीता और श्रद्धा हार गई और कदु खुश हो गई। उस कारण से तब से विनीता को कदु की दासी बनना पड़ा। लेकिन वास्तव में श्राप किसका था? कदु को दासी बनने का श्राप किसने दिया? अरुण ने। भूल गए? ये तो 2 साल पहले की बात भूल गए, आप तो 15 मिनट पहले की बात भूल गए। कदु ने श्राप दिया था ना, अरुण ने विनीता को श्राप दिया था ना कि तुम्हें अपनी सौत की दासी बनना पड़ेगा। उसमें निमित्त कौन बना? कदु निमित्त बनी उसमें। उस कारण से विनीता को कदु की दासी बनना पड़ा। तो ये कथा जब पूरी हो रही थी, ये वार्तालाप वो उग्र सभा और शौनक के बीच में हो रहा है। उग्र सभा का एक नाम लोमहर्षण भी है, लोमहर्षण के पुत्र उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो जब उग्र सभा ने बात बताई उग्र सभा के बारे में, तो शौनक जी को कौतूहल हुआ, उनको जिज्ञासा हुई, अरे उच्च सभा कैसे पैदा हुआ, उच्च सभा कौन था? शौनक जी ने पूछा। शौनक जी के साथ नैमिक सारणी में ये तो कथा हो, शौनक के साथ 7,000 ऋषि थे और ये कथा वो सुन रहे थे उग्र सभा से नैमिक सारणी में। तो शौनक के बीच में कथा को रोक के पूछ रहे कि ये उच्च सभा कौन है, इसका जन्म कहां से हुआ। फिर उसके बाद शौनक कहा, उग्र सभा ने वो पूरी कथा सुनाई, समुद्र मंथन की कथा सुनाई, क्योंकि उच्च सभा का जन्म हुआ था समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन आपको पता है क्या था? समुद्र मंथन क्षीर सागर का मंथन किया गया था, देवता और असुरों ने संधि करके उसका मंथन किया था, उसमें अनेक प्रकार के लोग और अनेक प्रकार की वस्तुएं निकली थी, हलाल विष निकला था, फिर सुरा देवी निकली थी, फिर कौस्तुभ मणि निकला था, लक्ष्मी देवी निकली थी, उच्च सभा निकला था, बहुत सारी वस्तुएं उसमें से निकली, बहुत सारे लोग निकले थे उसमें से। आपको पता है दैत्य और दानव असुर क्यों कहलाए और देवता और असुर क्यों कहलाए? दैत्य और दानव दो है ना अलग अलग, क्यों? क्योंकि कश्यप की अनेक पत्नियों में से दो है दीति और गनु, दीति के पुत्र दैत्य कहलाए और दम के पुत्र दानव कहलाए। इसी पर इसीलिए इंग्लिश में भी दो वर्ड है डेविल एंड डीमन, क्योंकि संस्कृत में दो है इसलिए, दैत्य और दानव है इसलिए इंग्लिश में भी दो है डेविल एंड डीमन। तो ये दोनों दैत्य और दानव जब वो असुर कहलाए और देवता वो असुर कहलाए, क्यों? क्योंकि ये समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से सुरा देवी निकली थी। सुरा लेकर एक प्रकार का ड्रिंक होता है बेवरेज लेकर निकली थी, वो पीकर पीने वाले का बल बढ़ जाता और वो मधुमक्त हो जाता है। तो सबसे पहले असुरों को दैत्य दानव को ऑफर किया गया सुरा देवी, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, क्यों? क्योंकि दैत्य दानव मूर्ख होते हैं, उनकी बुद्धि जड़ होती है, इन्होंने इसको लेने के लिए अस्वीकार कर दिया, इसको सुरा देवी को। तो चूंकि दैत्य दानव ने सुरा देवी को अस्वीकार कर दिया इसलिए उनका नाम हुआ असुर, क्योंकि सुरा देवी को स्वीकार नहीं किया ना इसलिए वो असु कहलाए और देवता ने उसको स्वीकार कर लिया इसलिए देवता लोग सुर कहलाए। तो विष्णु पुराण में बताया गया है, पराशर कहते हैं विष्णु पुराण में, इस दुनिया में केवल 2 प्रकृति के लोग हैं, 2 ही प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में, एक सुर और दूसरे असुर। सुर कौन है? जो विष्णु के भक्त है वो सब सुर है, असुर कौन है? जो विष्णु के भक्त नहीं है। पराशर कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में 2 ही प्रकार के लोग हैं, सुर और असुर। विष्णु के भक्त सुर है, विष्णु के भक्त नहीं वो असुर है। किसी ने पूछा तीसरी कैटेगरी, पराशर बोला नहीं है, 2 ही कैटेगरी है। तीसरी श्रेणी का व्यक्ति मनुष्य नहीं है, 2 ही है, सुर और असुर। इसलिए हमें सुर बनना चाहिए अथवा विष्णु के भक्त बनना चाहिए, असुर नहीं बनना चाहिए। तो ये उच्च सवाल है। और उसमें से एक मजे की बात यह है कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी भी बाहर निकली, तो लक्ष्मी को किसने स्वीकार किया? लक्ष्मी किसकी पत्नी है? अरे आप लोगों को लक्ष्मी के बारे में तो पता होगा, लक्ष्मी की सेवा करते पूजा करते दिवाली के समय, लक्ष्मी किसकी पत्नी है? विष्णु की पत्नी है ना। लक्ष्मी जो है वो विष्णु की पत्नी है। तो ये लक्ष्मी जो है जो कहां से उत्पन्न हुई? क्षीर सागर से, समुद्र मंथन से, मंथन से लक्ष्मी पैदा हुई। तो लक्ष्मी के पिताजी कौन हुए? समुद्र। और ये लक्ष्मी को स्वीकार किया विष्णु ने। तो क्या होता है, भीमसेन को आप सब लोग जानते हैं, पांडवों में भीमसेन। तो भीमसेन और कृष्ण में दोनों को एक दूसरे को गाली देने की स्पर्धा होती है। कृष्ण और भीमसेन का प्रेम ऐसा है, अनोखा प्रेम है उनका। वो एक दूसरे को बहुत गंदी गंदी बातें सुनाते हैं, गाली गलौज करते हैं एक दूसरे के साथ, कृष्ण और भीमसेन। तो कृष्ण ने बोला ये भीमसेन एक नंबर का जड़ बुद्धि है, एक तो पेटू है, खाता बहुत है, इसलिए उसकी बुद्धि जड़ है, और दूसरा ये राक्षसों के साथ शादी करता है। देखो ये हिडिंबा से शादी कर ली, ये देखो शादी करने वाली औरत है। तो भीमसेन ने कहा अरे ये तो ठीक है, मैं तो राक्षसी के साथ शादी करके अपना काम करता हूं, तुम तो ढजवाई बन गए हो, हमेशा अपने ससुर के घर में पड़े रहते हो। समुद्र उनके ससुर है ना, समुद्र उनके ससुर है, क्षीर सागर उनका समुद्र है। तो नारायण विष्णु कहां निवास करते हैं? समुद्र में तो पड़े रहते हैं शेष नाग में। इसलिए भीमसेन कहते हैं मैं तो एटलीस्ट घर जमा, तुम तो घर जमाई हो, क्योंकि घर जमाई बनना हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत कलंकयुक्त माना जाता है, खराब माना जाता है, घर जमाई नहीं बनना चाहिए कभी। भीमसेन बोल रहा कि आप तो मुझसे भी ज्यादा निपल्ले हो, आप तो घर जमाई बनकर रहते हो अपने ससुर के घर में। तो एक बात याद आ गई, सिंधा पहुंचा दिया, तो उसी में से उच्च सभा निकला था। ये समुद्र मंथन में से बहुत सारी वस्तुओं से एक उच्च सभा, ये कथा उसने बहुत विस्तार से बताई है। समुद्र मंथन की कथा अपने पास समय नहीं है, बहुत भागवत में भी आकर्ष करने हैं, ये कथा बहुत विस्तार से बताई है। तो विनिता को विष्णु की दासी बनना पड़ा। अभी क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये जो अरुण जो थे वो पैदा होने से पहले ये बताए थे कि तुम्हारे जो दूसरा पुत्र है वो तुम्हें दासी पद से मुक्त करेगा, लेकिन शर्त ये है कि इसको तुम्हें 500 साल तक तुम्हें उसको अंदर रखना पड़ेगा। तो 500 साल तक जो रहेगा ठीक रहेगा, वही तुम्हें तुम्हारे दासी पद से तुम्हें मुक्त करेगा, ऐसा अरुण जाने से आकाश में जाने से पहले बता के गए। और उग्र सभा जी कह रहे हैं कि उन्होंने जाकर सूर्यदेव के रथ पे बैठ गए, उनका तेज हरण किया, ऐसे उग्र सभा ने बात में कुछ ऐसे मेंशन किया कथा में। तो इन सबको कौतूहल हुआ, शौनकादि ऋषि बोले ऐसा क्यों, सूर्यदेव का तेज क्यों बढ़ गया था, वो क्यों अरुण ने जाकर उनका तेज का हरण किया, ऐसा क्यों हुआ? तो उग्र सभा जी बता रहे हैं कि समुद्र मंथन में आपको बता दें वो कथा कि राहु देवताओं की लाइन में बैठ गया था और मोहिनी पुत्री जब अमृत बांट रहे थे तो राहु ने देवताओं का वेश बना के छल से पी लिया था उसको, यहां तक आ गया था अमृत। उस समय सूर्य और चंद्र जो राहु के लेफ्ट और राइट बैठे थे उन्होंने चुगली कर ली थी राहु के बारे में, देखो ये राहु असुर है, यहां आकर अमृत पी रहा है, ऐसे चुगली कर दी। उस कारण से मोहिनी ने उनका शिरच्छेद कर दिया था राहु का, और वो राहु का जो सिर था वो आकाश में उछला अट्टहास से करते हुए। तब से राहु जो है वो उसका जो सर है वो अमर हो गया, और उसको फिर देवताओं के जो लोग होते हैं ग्रह उनमें स्थान मिला, अमृत पी गया था इसलिए। और चूंकि सूर्य और चंद्र ने चुगली कर दी थी तब से राहु उनसे दुश्मनी करता है, उनसे वैमनस्य रखता है, इसलिए उन दोनों को ग्रस्त करता है, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, राहु सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण करते हैं। तो क्या होता था कि इस घटना के बाद अक्सर राहु सूर्य को पीड़ित करता था, उसको ग्रस्त करता था। तो सूर्य एक दिन सोचने लगे कि देवताओं के कल्याण के लिए मैंने चुगली कर दी, मैंने विष्णु को बता दिया, और ये राहु वो मुझे ग्रस्त करने के लिए आता है तो मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं आता। ये देवता बस बैठे बैठे सीन देखते रहते हैं, शो देखते रहते मेरे ग्रहण का, लेकिन मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं आता। इसलिए सूर्य का आ गया क्रोध, बोले अब मैं सबको अच्छा मजा चखाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, आकाश में एक एक स्थित हो गए, बोले जाओ अभी नाश तो होऊंगा ही नहीं, अस्ताचल को जाऊंगा ही नहीं, मैं यही खड़ा रहूंगा। और फिर अपने प्रकाश को बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे। उस कारण से सब महर्षि लोग डर गए, बोले अभी तो, क्योंकि महर्षि लोग हमेशा मनुष्य मात्र जीव मात्र के कल्याण करते हैं। तो महर्षि लोग बहुत डर गए इस बात से, लोग अभी तो ये लोग खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो लोग गए देवताओं के पास, देवताओं को भी देखिए क्या हो रहा है। फिर देवता महर्षि को लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी को निवेदन किया कि देखिए सूर्य देव आज पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनका तेज बढ़ता जा रहा है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपकी बात सही है, लेकिन मैंने इसका उपाय पहले से सोच के रखा है कि विनिता का जो पुत्र है अरुण, जिनका शरीर बड़ा बड़ा विशाल है, अब खुद भी बहुत तेजस्वी है और सूर्य के इस तेज को धारण कर सकते हैं, वो सूर्य के तेज का धारण करेंगे। तब से जो है वो अरुण उनके रथ पर हमेशा विराजमान साथ का काम करते हैं। तो ये बात उन्होंने, फिर तो वो ब्रह्मा की व्यवस्था ठीक हो गई, फिर समझौता हो गया, सूर्यदेव समझा पटा के ठीक कर दिया उनको। तो तब से अरुण ने उनके साथ ही। अभी क्या हुआ कि गरुड़ जो है अपने माता के पास चले गए, पैदा हो गए, समय अरुण ने बताया था कि 500 साल के बाद ये जो तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा वो तुम्हें दासपुत्र से मुक्त करेगा। तो गरुड़ उत्पन्न हुए और गए अपनी माँ के पास, क्योंकि पैदा हुए यहां अपने पिता के घर में पैदा हुए गरुड़ जी, और माता कहां थी, समुद्र के उस पार, किसके साथ, कद्रु के साथ, कद्रु और उनके पुत्रों की दासी बनकर रह रही थी वहां। तो गरुड़ जी पैदा हुए अंडे से बाहर निकले, उछल के सीधा सामने के तट पे गए और वहां देखा उनकी माँ से मिले, विनिता से, माँ ने बड़े प्रेम से गले लगाए अपने बच्चे को। और गरुड़ ने देखा, गरुड़ तो पैदा होते ही बहुत साइज में बढ़ गए, ऐसा नहीं कि मनुष्य के बच्चे के छोटे होते हैं, माँ का दूध पीते हैं, फिर धीरे 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 बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं। ये तो कश्यप के पुत्र है, कश्यप प्रजापति के पुत्र है, साधारण नहीं थे। तो तुरंत ही पैदा होते ही साइज भी बढ़ गए और गए अपनी माँ से मिले, देखा कि माँ तो दासी बनी हुई है, दासी बनी हुई, मौसी की दासी है माँ तो। तो फिर घटना पूछी क्या हुआ था माँ, ऐसे कैसे हो गया। तो माँ ने पूरी बात सुनाई। अभी क्या कहते थे ये लोग, हमेशा कुछ न कुछ इनसे काम करवाते रहते थे। तो एक बार कद्रु ने विनिता से कहा कि इस समुद्र में के बीच में एक बहुत ही सुंदर द्वीप है, रामण्य द्वीप, तो वहां बहुत ही सुंदर देखने लायक जगह है और हम वहां विहार कर सकते हैं। तो तुम मुझे अपने पीठ पर ढो लो और तुम्हारे जो पुत्र है गरुड़ वो मेरे पुत्रों को पीठ पर ढो ले और फिर तुम हमें लेकर जाओ, हमें सैर कराओ। ठीक है, करना पड़ेगा दासी। तो विनिता की पीठ में कद्रु और गरुड़ की पीठ में सर्प। तो गरुड़ तो आ गया थोड़ा क्रोध, गरुड़ क्या किए, वो आकाश में उड़े, थोड़ा सूर्य के नजदीक चले गए, सूर्य के थोड़े नजदीक गए तो बहुत गर्मी लगने लगी, किसको, सर्पों को, बहुत पीड़ा होने लगी, कुछ लोग तो उसमें से बेहोश हो गए। तो कद्रु को बड़ी दया आ गई अपने बच्चों पर, इसलिए कद्रु ने बहुत ही सुंदर इंद्र की स्तुति की। इंद्र की स्तुति से फिर इंद्र प्रसन्न होकर बहुत ही ठंडे पानी की वर्षा की उनके ऊपर, सर्पों के ऊपर, बहुत उनके ठिकाने आए। फिर ऐसा करके राम ने द्वीप पर पहुंच गए, तो वहां कुछ समय के विहार किया। फिर सर्पों ने आकर गरुड़ को बोला कि हमें और एक द्वीप में जाना है, हमें उठाकर वहां ले चलो। तो गरुड़ सोचने लगा ये कमकत लोग बहुत परेशान करते हैं, इन लोगों से कैसे मुक्ति पाई जाए। इसलिए उन्होंने बहुत मीठी वाणी में सबको से बोले। ऐसा होता ना कि जरूरत पड़ती है तो किसी को भी बाप बनाना पड़ता है। तो अभी सिचुएशन ये थी कि इसके साथ क्रोध की आवेश में तो बात कर नहीं सकते, अपने मन का भाव नहीं बता सकते क्योंकि अभी माँ दासी बनी हुई है। वैसे गरुड़ के पास ऐसा तो बंधन नहीं था, लेकिन वो माँ जैसे करते थे वैसे ही वो करते थे। वो बहुत ही अपनी माँ के बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, माँ को कुछ करने के लिए सब कुछ करते थे। तो सरपंच से पूछा कि उनके भाई हुए ना, तो भाई से पूछा कि आप बताओ कि ये मेरी माँ को तुम्हारी माँ के दासी पर से कैसे मुक्ति दिलाई जा सकती है। कुछ वी शुड हैव अ डील, कुछ समझौता कर लेते हैं। तो सरपंच बोला कि ठीक है, तुम हमारे लिए अमृत ला लो, तुम देवताओं से अमृत चुरा के लाओ, तुम्हारी माँ को हम लोग दासी पर से मुक्त करा देंगे। तो गरुड़ बोले ये तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि गरुड़ की तो बहुत छोटी बात है। तो वो जो समुद्र मंथन में से जो अमृत निकला था ना लास्ट में, तो देवताओं को पिला दिया विष्णु ने मोहिनी मुद्रा का उदाहरण करके, उसके बाद भी अमृत तो बचा था ना, पूरा थोड़ी पिला दिया, काफी बचा। तो उसको फिर इंद्र ने उसको सुरक्षित रखा था। तो जिस समय उसको सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले उन्होंने नर के हवाले किया था, नारायण ऋषि में से जो नर था उसके हवाले किया। अब नर ने फिर आगे व्यवस्था करके विश्वकर्मा, जिसको सौभम भी कहते हैं उनका एक नाम, वो विश्वकर्मा जो देवताओं के आर्किटेक्ट या इंजीनियर है, जिस प्रकार से बिलस वर्ग में मयदानव है, जिसने बिलस वर्ग के जो लोग हैं महल है उसे बनाए हैं मयदानव, उसी प्रकार से देवलोक में इंजीनियर है विश्वकर्मा। तो नर ने भी उनको अमृत की सुरक्षा के लिए कोई यंत्र वगैरह बनाने के लिए उनको काम दिया, तो वो कथा एक बार। तो सर्वर बोला तुम अमृत लेकर आओ, हम तुम्हारी माँ को छुड़ा देंगे। तो गरुड़ जी तो वहां से चले, जाने से पहले अपनी माँ से मिले, माँ ने बहुत ही स्वस्थ वाचन किया उनको, सब आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी जो भगवान की अलग अलग रूप है तुम्हारी रक्षा करेंगे, अलग अलग देवता तुम्हारे शरीर की रक्षा करेंगे इत्यादि इस प्रकार। बच्चा बोला, गरुड़ बोले माँ बहुत भूख लगी है क्या खाऊं? ये बच्चा माँ का दूध पीने वाला नहीं था, ये बच्चा कैसा था, मांस खाने वाला था। बोले माँ बहुत भूख लगी है क्या करूं मैं, क्या क्या खाऊं? माँ बोली, विनिता बोली, बेटे यहां से कुछ दूरी पर एक द्वीप है, उस द्वीप में निषाद लोग रहते हैं, निषाद माने की मछुआरे, और ये निषाद विनिता बोली कि सब पापी है, एक तो मछली को मार मार के खाते हैं वो पाप तो कर ही रहे ऑलरेडी, और दूसरे भी अनेक प्रकार के व्यभिचार जुआ इत्यादि सब प्रकार के पाप करते हैं, तुम इन लोगों को खा लो, इन लोगों की आयु वैसे भी समाप्त हो गई। तो गरुड़ बोले कितने हैं? माँ बोली हजारों की संख्या में तुम्हारे पेट भर जाएगा कदाचित। तो बोले गरुड़ बोले ठीक है, गरुड़ तो गए उस द्वीप में, गए वहां सबसे पहले तो, और गरुड़ कैसे थे कि अपनी इच्छा के अनुसार अपनी साइज ज्यादा कम कर सकते हैं, तो वहां द्वीप में जाते ही उन्होंने अपनी साइज बहुत बड़ी कर दी और बहुत ही जोर से अपने पंख उन्होंने उड़ाए, उसकी वजह से वहां बहुत धूल उड़ी और वहां समुद्र का पानी भी उन्होंने पी लिया, तो सब धक्के बक्के हो गए, जो निशान लोग वहां रहते थे द्वीप पर वो सब घबरा गए, उनको पता नहीं चला क्या होगा, कितनी धूल उड़ रही थी, उनकी आंखों की धूल चली गई, दिखाई नहीं दे रहा था, तो दिग्भ्रांत होकर इधर उधर सब लोग दौड़ रहे। गरुड़ जी क्या किए, शांति से एक जगह मुंह फाड़ के खड़े हो गए, बैठ गए बस, बहुत विशाल है ना, जिस दिशा में बहुत ज्यादा निशान सभी एक दिशा में जा रहे थे, तो गरुड़ जी बैठ गए फाड़ के, सब निशान उनके मुंह में चले गए, खा लिया गरुड़ जी ने, खा लिया पचा लिया। अभी क्या हुआ, गरुड़ जी के निकलने से पहले माँ ने एक मॉर्निंग दी थी, जैसे माँ अपने बच्चे को बोलते ना कि बेटा सब कुछ खाना लेकिन ज्यादा तीखा मत खाना, ज्यादा तलाव मत खाना, तो माँ ने भी गरुड़ को बिंदा में गरुड़ को वार्निंग दी, बेटा गलती से ब्राह्मण मुंह में ना चले जाओ, देखना जरा ब्राह्मण को मत खा लेना। यानी तुम्हारा भ्रामक तुम्हारे मुंह में चला गया, तुम उसको पहचान नहीं पाओ तो समझ लेना कि वो तुम्हारे कंठ को दहा देने वाला होगा। उसको पहचाना है, यदि भ्रामक तुमने खा लिया, परीक्षा यदि करनी है तो देख लेना कि भ्रामक तुम्हारे कंठ में गले में जाएगा तो वो गले में जलन पैदा करेगा। जैसे कुछ मिर्ची हम लोग खा लेते गले में जलन होती ना, वैसे माँ ने बोला बेटे ब्राह्मण गले में चला जाता है कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जल रहा है, तो फिर समझ लेना कि ब्राह्मण तुरंत बाहर निकाल दे, उसको मत मार, उसको मत खाना। तो ये निषादों के बीच में एक ब्राह्मण था, निषादों के बीच में कभी ब्राह्मण नहीं होता है, लेकिन था क्यों? क्योंकि इस ब्राह्मण ने निषाद की कन्या से शादी की थी, तो वहां आया हुआ था बेचारा अपने ससुर के घर पे। ब्राह्मण तो कभी निषाद से शादी नहीं कर सकते, ब्राह्मण के जजाति की कथा में, जजाति की कथा अपनी कल भी है, कल जजाति की कथा सुना, उसमें दो प्रकार के विवाह का वर्णन किया है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम प्रतिलोम विवाह। तो उसमें विवाह के नियम होते हैं, जो ब्राह्मण जो होता है वो ब्राह्मण स्त्री क्षत्रिय स्त्री वैश्य शूद्र स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, अपने नीचे से बड़े स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, लेकिन वो चांडाल यवन हूं किराट निषाद जाति की स्त्री के साथ शादी नहीं कर सकता, यदि करेगा तो वो श्राद्ध का अन्न खाने के योग्य नहीं रहता, वो बहिष्कृत हो जाता है, ब्राह्मण की कोम से वो बहिष्कृत हो जाता है यदि वो चांडाल या निषाद स्त्री के साथ शादी करेगा। तो ये ब्राह्मण ने निषाद स्त्री के साथ शादी की, तो गरुड़ ने गलती से खा लिया, तो गरुड़ को गले में थोड़ी जलन होने लगी, तो माँ की बात याद आ गई, तो बोले कि ब्राह्मण देव आप तुरंत मेरे कंठ से बाहर आ जाइए। तो ब्राह्मण बोले कि देखो मेरी वाइफ निषाद है, तुम निषादों को खाने के लिए आयो यहाँ, तो मेरी पत्नी को लेकर बाहर निकलूंगा मैं, उसके बिना तो फिर जहां हो जाएगी वहां मैं जाऊँगा। तो ब्राह्मण ने कहा गरुड़ बोला ठीक है आप अपनी पत्नी के साथ बाहर आ जाइए, तो दोनों बाहर आ गए खा लिया। तो ये खाकर तो गरुड़ को बिल्कुल भी तृप्ति नहीं हुई, अभी भूख लगी थी, क्या करूं, गरुड़ जी सोचना ये खाने के बाद भी उनकी भूख नहीं मिटी अभी तक। तो फिर गरुड़ जी आगे बढ़ रहे थे, उनकी मुलाकात हुई उनके पिताजी से, गरुड़ जी पैदा होने के बाद तो पिताजी से मुलाकात हुई नहीं एक भी बार, उनके पिताजी कौन, कश्यप, कश्यप प्रजापति के साथ मुलाकात हुई नहीं अभी तक, पहली बार मुलाकात हुई। पिताजी मिले तो दोनों में कुशल समाचार हुआ, जैसे एक दूसरे लोग मिलते हैं तो वे पूछना कैसे सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना, तो वैसे ही गरुड़ जी ने अपने पिताओं को प्रणाम किया, उनका पूजन किया, कश्यप ने कुशल समाचार पूछा सब ठीक ठाक चल रहा है, गरुड़ ने बोला पिताजी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपको सवाल होना चाहिए बढ़िया कैसे चल रहा है, माँ तो राशि बनी हुई है। लेकिन ये बात गरुड़ के बहुत छोटी थी, जो शर्त जो थी अमृत लाने की ऑलरेडी छुड़ा लिया था, वैसे लिखा जाएगा केवल अमृत लाना था, इसलिए गरुड़ बोला सब ठीक ठाक चल रहा है। बोले मेरे भाई भी अच्छे अच्छे हैं, मौत से हैं, माँ भी ठीक है, केवल मेरे विषय में एक समस्या है। कश्यप जी बोले क्या समस्या है बेटा? बोले मेरा पेट भरने वाला भोजन कोई नहीं है, मैं पेट भर के खा नहीं सकता, कुछ ऐसा मिल नहीं रहा जिससे मेरा पेट भर जाए। माता ने सहस्त्र निषाद खाने के लिए बोला खा लिए, लेकिन वो तो नाश्ता हुआ, अभी तक पेट नहीं भरा। तो कश्यप जी बोले ठीक है, यहां से कुछ दूरी पर एक सरोवर, उस सरोवर में हर रोज एक बहुत विशाल विशाल का एक हाथी, एक विशाल का एक कछुए के साथ युद्ध करता रहता है, तुम दोनों को पकड़ के खाओ। और दोनों के विषय में थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। तो पूर्व काल में क्या था कि दो बड़े तेजस्वी महर्षि थे, तेजस्वी ऋषि थे, उसमें जो दो भाई थे, जो बड़ा वाला भाई था उसका नाम था विभावसु और छोटा वाला भाई था जिसका नाम था सुप्रतीक, दोनों तेजस्वी लेकिन दोनों के टेम्परामेंट बहुत हाई। और उसमें से जो सुप्रतीक था वो लोभ का मारा हुआ था, धन का लालच था, और बड़े भाई विभावसु जो थे वो उनको क्रोध बढ़ाता था, रोष, एक ही कमजोरी थी, रोष और दूसरे की कमजोरी थी लोभ। तो क्या हुआ था कि एक बार दोनों एक साथ मिलकर रहते थे, लेकिन काफी धन एकत्रित होने के बाद लोग दान देते ना, ब्राह्मण को दान देते। तो सुप्रति ने एक बार निश्चय किया कि अपने भाई के पास गया और बोला कि हमारा बंटवारा हो जाना चाहिए, मैं अपना धन अलग से चाहता हूं। कलयुग में बहुत टिपिकली ये सब होता है, सब भाई एकत्रित नहीं रह पाते। हालांकि वो कलयुग की बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो घटना हुई। सुप्रति जाकर बोला अपने भाई से कि मैं आपसे अलग हो जाना चाहता हूं, बंटवारा हो जाना चाहिए, अपना धन जो है 50-50 बांटो। तो फिर उस समय विवाह अपने बड़े भाई ने ला के देखा, देखो बेटे अमित भैया, क्योंकि क्या होता है कि भाई तो होता है बड़ा भाई, वो छोटे भाई के लिए पिता के समान होता है। शास्त्रों में बताया है कि पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई छोटे भाई के लिए पिता समान होता है, उसको उसी प्रकार से उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो बोले कि हम दोनों में इस प्रकार से बंटवारा ठीक नहीं है, इससे हम दोनों के जो शत्रु हैं वो हमारा फायदा उठाएंगे, हम दोनों से भेद करवाएंगे, हम दोनों से फूट डलवाएंगे और इस प्रकार से अधिक दोष पैदा होंगे। लेकिन सुप्रतीक ने बहुत आग्रह किया, बोले नहीं मुझे तो अपना धन चाहिए ही। तो विवाह वचन ने उसको श्राप दे दिया, बोला कि तुम बहुत विशाल का हाथी बन जाओगे। बोले तुम बहुत ज्यादा खाना चाहते हो ना, लोभ है ना, लोभ कर रहे ना धन के प्रति, वो बहुत ज्यादा लोभ है उसको। तो हाथी क्या बहुत ज्यादा खाता है ना, अमीन वो लोभ बस नहीं खाते, उसके बेचारे की डायट ही ऐसी क्या करें। लेकिन ये विवाह वसु ने सुप्रतीक को श्राप दिया, तुम एक विशाल का हाथी बन जाओगे। तो सुप्रतीक भी बड़े तेजस्वी थे, उसने भी अपने बड़े भाई को श्राप ले दिया, बोले तुम कछुए बन जाओ, विशाल का कछुए। तो कश्यप कह रहे हैं जरूर से देखो, तब से ये दोनों ये सरोवर में पड़े हुए हैं और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ वैर भाव रखते हैं और दूसरे एक दूसरे का उनका युद्ध चलता रहता है। तो तुम दोनों निकल रहे हैं बेकार, तो तुम दोनों दूसरे लोगों को भी पीड़ा दे रहे हैं और उनको तुम खाकर खत्म करो, बात और शाप से मुक्ति मिल जाए तुमको। तो गरुड़ जी बोले ठीक है, गरुड़ जी उस एड्रेस पर गए, उन्होंने देखा वहां हाथी जो था उसकी साइज क्या थी, 10 योजन ऊंचा, 1 योजन बराबर होता है 13 किलोमीटर, 1 योजन बराबर लगभग एक्यूरेटली बताऊं तो 1 योजन बराबर होता है 12.8 किलोमीटर होता है, 1 योजन बराबर लगभग 13 किलोमीटर। तो ये जो हाथी था उसकी साइज थी 10 योजन। ये हाथी मैं बता रहा ना, ये पृथ्वी लोग के हाथी नहीं है, सब भूमंडल जो है हमारा भूमंडल उसमें बीलस वर्ग भी है, पृथ्वी लोग के अलावा दूसरे भी जो लोग हैं मुझे भूमंडल में ही आते हैं, जो आर्थिक पेरेडिक सिस्टम में आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है वो भागवत के 5वें स्कंध में बताया है। तो वहां के हाथी हैं, इस पृथ्वी के हाथी नहीं, मतलब जो पृथ्वी हम जानते हैं उस पृथ्वी का हाथी नहीं था। तो 10 योजन ऊंचा और सॉरी 6 योजन ऊंचा और 10 योजन लंबा था यह हाथी, और जो कछुआ था वो 3 योजन ऊंचा और 10 योजन उसकी गोलाई थी, ये उसकी साइज है। तो क्या होता था कि हर रोज ये हाथी वो सरोवर में पानी पीने के लिए आता, तो कछुआ पानी का मंथन करते हुए बाहर आ जाता और उसके ऊपर अटैक करता, तो ये हाथी भी पूरी शक्ति के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता कछुए के ऊपर। ऐसे दोनों में चलता रहता काफी सालों। तो ये गरुड़ ने आकर देखा, तो गरुड़ गए दोनों वहां एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे, गरुड़ जी गए अपने दो पैरों से, एक से कछुआ और एक से हाथी को पकड़ लिया। जरा सोचे, हाथी और कछुए की साइज मैंने आपको बता दी, इन दोनों को गरुड़ ने अपने पैरों में पकड़ लिया, तो फिर गरुड़ की साइज क्या होगी, अद्भुत है ना, गरुड़ बड़े भयानक है लेकिन अपने विष्णु के भक्तों के लिए बहुत सुंदर है, बहुत प्रेम करते हैं विष्णु के भक्तों, लेकिन आसुरिक लोगों को बहुत पीड़ित करते हैं। तो गरुड़ जी ने उनको पकड़ लिया और फिर उड़ चले, उड़ते उड़ते वो पहुंचे हिमालय की तरफ जा रहे थे, एक्चुअली वो पहुंचे हिमालय की तरफ बाद में, पहले वो गए मेरु पर्वत पर अलंग तीर्थ में। मेरु पर्वत क्या आपको बताया ना, मेरु पर्वत भूमंडल के बीचों बीच मेरु पर्वत है, जो स्वर्गीय पर्वत है हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सुमेरु पर्वत बोलते हैं। उस मेरु पर्वत पर अलप तीर्थ है, उस अलप तीर्थ पर गरुड़ जी उड़ते उड़ते गए, इन दोनों को पकड़ गए और वो देखने लगे कि कहां मैं बैठ कर खाऊं, इन दोनों को आराम से चैन से बैठ कर खाऊं मैं। तो क्या देखा कि वहां के जो पेड़ हैं वो सब डर गए गरुड़ को देखकर, तो उनकी जो विंग्स की जो मूवमेंट थी पंख उसकी वजह से बहुत कंपन हो रहा था इन पेड़ों में। दिव्य वृक्ष थे, सब साधारण वृक्ष नहीं थे और ऑर्डिनरी वृक्ष की तरह नहीं, ये वृक्ष तो सब मनुष्य की बोली भी बोलने वाले थे। तो डर गए गरुड़ जी ने देखा एक वृक्ष तो डरे हुए तो उनको छोड़ दिया, हम नहीं बैठे। फिर वो आगे गए तो आगे उन्होंने एक विशाल वटवृक्ष देखा और वटवृक्ष ने गरुड़ जी को देखा और इस वटवृक्ष ने गरुड़ जी को सामने से न्योता दिया और उसकी जो शाखाएं थी वो वैदुर्य मणि की थी और इसमें जो फल लगते थे वो सोने के चांदी के लगते थे। कैसा वृक्ष था ये? वैदुर्य मणि का वृक्ष और उसके जो फल थे वो सोने और चांदी के। हमारी बुद्धि से नहीं समझ सकते ना, क्यों? क्योंकि हम तो पाचर संस्कृति में पढ़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज में जो एजुकेशन जो मिल रहा है उसकी वजह से महाभारत की बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि वेस्टर्नर्स ने किरणियों ने हमारा दिमाग जड़ बुद्धि बना दिया है, जड़ बुद्धि हो गई, नहीं समझ सकते। तो ये जो वृक्ष था बड़ा विशाल वृक्ष था, उसने गरुड़ को न्योता दिया। वो बोले कि देखो मेरी एक जो शाखा है ना कितनी लंबी है, 100 योजन लंबी है, अर्थात 1300 किलोमीटर लंबी है। गरुड़ को बोले यार इसके ऊपर बैठकर आराम से खा लीजिए ना, हाथ खा लीजिए। गरुड़ को न्योता दिया तो गरुड़ जी उसकी बात सुनकर जोर से उसके ऊपर बैठे, तो बैठते ही वो शाखा टूट गई। और क्या हुआ कि जब वो शाखा गिर रही थी जमीन पर नीचे तो गरुड़ की अचानक से नजर पड़ी उल्टे लटकने वाले ऋषियों पर। उस शाखा पे उल्टे लटक के बालखिल्य नामक ऋषि तपस्या कर रहे थे। बालखिल्य, ये बालखिल्य ऋषि है वो कुछ खाते थोड़ी है, वो तो केवल सूर्य के किरणों का पान करते हैं, सूर्य की जो किरणें होते हैं वो पीते हैं, बस वही उनकी खुराक है, वही उनके आहार। और ये बाल के लिए ऋषि हमेशा सूर्य के रथ के आगे आगे चलते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, जिसे शास्त्र में वर्णन आता है। तो बाल के लिए ऋषि वहां उल्टे लड़के तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर गरुड़ की नजर पड़ी तो सोचने लगे कि ये शाखा यदि नीचे गिर गई तो उनका नाश हो जाएगा, मतलब उनका शरीर बहुत कमजोर होता है बाल के लिए ऋषि का, कुछ खाते पीते नहीं, बहुत कमजोर शरीर था लेकिन बड़े तेजस्वी थे। तो फिर गरुड़ जी ने क्या किया, उनके एक पैर में हाथी एक पैर में कछुआ और चौंक से इस शाखा को पकड़ लिया, उसको झपट लिया अचानक से गिरने से बचा लिया। तो बालक के ऋषि ने देखा गरुड़ की तरफ तो बड़ा अचंभा हुआ बालक के ऋषि को, क्योंकि ये कार्य तो देवताओं के लिए भी सुलभ, देवता भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। बालक के ऋषि को अचरज हुआ और फिर अभी ये तीनों को लेकर उड़ रहे थे गरुड़ जी, गरुड़ जी कहीं भी बैठ नहीं रहे। देखिए गरुड़ जी जो हैं वो साधु संतों के लिए बहुत स्नेही है, आधुनिक पट्टों के लोगों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन साधु संतों के लिए किसी प्रकार के कष्ट झेलने में वो पीछे नहीं आते। तो उड़ रहे थे कहीं भी बैठ नहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि कैसे बैठू गरुड़ जी सूत्र में, कैसे बैठू मैं यदि बैठूंगा तो तीन में से कोई छोड़ना पड़ेगा मुझे, और बाल के लिए उसी खास करके वो उनको पहले कहां ठिकाने लगा वो सोच रहे थे। तो आगे जा रहे थे, वो उठते 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 गंधमादन पर्वत पर आ गए। गंधमादन पर्वत पर कौन गए थे पहले? कश्यप जी। कश्यप जी वहां तपस्या कर रहे थे गंधमादन पर्वत पर। गंधमादन पर्वत की बात महाभारत में बाद भी आती है, जब पांडवों को वनवास प्राप्त होता है तो वो गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाते हैं, हमें वो घूमते और पांडु भी गए थे बाद में सुना, तो वहां गए वहां उठते उठते वहां पहुंच गए। तो कश्यप जी से बड़ी मुश्किल से बोले, क्योंकि चौंच में तो शाखा पकड़ के रखी थी। गरुड़ जी अपने पिताजी से संबोधन करके बोले, पिताजी मैं क्या करूंगी शाखा को, मैं कहां रखूंगी? तो कश्यप जी बात समझ गए थे
इसलिए कश्यप जी बड़े नम्र भाव से, विनीत भाव से बालक के लिए ऋषि के पास गए और बोला कि ऋषिवर, ये जो मेरा पुत्र है वो देवताओं का ही हित करने वाला है भविष्य में, तो अभी भी महान कार्य करने के लिए जा रहे हैं, कृपया आप उसको आज्ञा दें। बोला इंदिरा के पिता की आप ये शाखा छोड़ दीजिए, आप कहीं और चले जाए, ऐसा इंदिरा जी बोला। तो बालक ने ऋषि समझ गए उनकी बात, कुछ भी मिला कुछ भी बोले बिना वो शाखा को छोड़ के हिमालय पे चले गए। और जैसे ही बालक ने ऋषि ने ये शाखा छोड़ दी, गरुड़ ने उसको छोड़ दिया। एक हाँ, अभी गरुड़ जी पूछने लगे, गरुड़ जी कश्यप से पूछने लगे, ये शाखा को मैं कहाँ छोड़ूं, क्योंकि यहाँ तो नीचे बहुत सारे मनुष्य और दूसरे कुछ देवता जो क्रीडा के लिए आए हुए दिख रहे हैं मुझे, इन लोगों को मैं शाखा नहीं छोड़ सकता, मारे जाएंगे सब लोग, शाखा को कहाँ छोड़ू मैं। तो फिर कश्यप जी एक और एड्रेस बताए, बोले एक एकांत स्थान है जहाँ एक पर्वत है जहाँ हमेशा वो हिम आच्छादित रहता है, जहाँ हमेशा स्नोफॉल होता रहता है, बर्फ गिरती रहती है, वहां तुम जाकर उसको गिरा दो, वहां कोई नहीं मरने वाला है। तो गरुड़ जी तत्काल 100,000 योजन उड़ के गए, इतना 100,000 योजन थोड़े समय में आप पहुंचे, क्योंकि गरुड़ के गति कैसी थी, मन की तरफ भाग चुके, मन की तीव्र गति से जाता है ना, एक सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है, उतनी तीव्र गति से गरुड़ उड़ सकते थे मन की गति से। तो पहुंच गए वहां 100,000 योजन, वहां उन्होंने वो शाखा छोड़ दी। फिर शाखा छोड़ते ही वहां बहुत सारी कुछ धराशायी हो गई लिया। फिर एक पर्वत के शिखर, उसी पर्वत के शिखर पर बैठकर उन्होंने कछुआ और हाथी दोनों को खा लिया। अभी गरुड़ को लगा अभी मैंने लंच खाया है, अभी शक्ति आई, अभी कहां सीधे कहां जाना है, गरुड़ जी कहां जा रहे हैं अमृत लेने के लिए, कहां किस दिशा में, अमरावती, अमरावती क्या है, देवराज इंद्र का उनका कैपिटल है, उनका लोक है अमरावती, उनकी नगरी है देवराज इंद्र की नगरी, वहां उसको बचा के रखा था अमृत को। गरुड़ जी गए उस दिशा में, जैसे ही गरुड़ जी उस दिशा में जाने लगे, देवताओं के लोक में अनेक प्रकार के उत्पाद जनित संकेत मिलने लगे। अपशुकन, अपशुकन होता है ना, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई, या बाएं या दाएं ये क्या फड़कता है, अपनी आंखें फड़कती है, ये सब अपशकुन होते हैं ना। आप कूड़े कूड़े लेडीज को ज्यादा पता होगा, वृद्ध माताओं को ज्यादा पता होगा इसके बारे में। तो ऐसे अपशकुन देवलोक में भी होते हैं। तो देवता लोक में क्या अपशकुन होने लगा कि वहां उल्का पात होने लगा, फिर खून की बारिश होने लगी, फिर देवताओं के आयुध बिना कारण एक दूसरे के साथ टकराने लगे, उनके जो अस्त्र शस्त्र थे देवताओं के वे एक दूसरे में टकराने लगे। तो ये सब देखकर इंद्र समझ गए कि मेरे ऊपर कोई महान संकट आने वाला है, महान भय आने वाला है, इसलिए डर गए। वो गए बृहस्पति के पास, बृहस्पति कौन है, देवताओं के पुरोहित, असुरों के पुरोहित कौन है, शुक्राचार्य। तो बृहस्पति के पास गए देवराज इंद्र और उनके चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया उनको, बोले गुरुदेव क्या हो रहा है, ये उत्पात क्यों हो रहा है। बृहस्पति बोले ये तुम्हारी ही करतूत है, ये तुम्हारे अपराध का फल है, तुम्हारे अपराध और महाक्रिया ऋषि की तपस्या की वजह से गरुड़ इस दिशा में आ रहे हैं, जो तुम्हारा अमृत अपहरण करके लेकर जाएंगे, और वो इस कार्य करने में पूरी तरह से समर्थ है, तुम उसको रोक नहीं सकते। तो फिर ऐसे बता, तो सौनक जी पूछ रहे हैं अरे इंद्र ने ऐसा क्या अपराध किया था। तो उग्र सभा जी बता रहे हैं कि क्या हुआ था कि एक बार कश्यप जी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, ये बात उग्र सभा जी सुना रहे हैं सौनक जी से, बताया ना बृहस्पति ने कि क्या अपराध किया, बृहस्पति ने बताया ना कि आप तुम्हारे अपराध की वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर शौनक ने पूछा कि देवराज इंद्र ने क्या अपराध किया था और ऐसा क्यों हुआ। तो उग्र सभा जी बता रहे हैं कि एक बार कश्यप प्रजापति पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो उसके लिए यज्ञ यज्ञ नहीं कर रहे थे, वो लोग पुत्र ऐसे नहीं करते थे पहले, प्रजापति कश्यप तो बहुत तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, जो इस ब्रह्मांड में सब कार्य कर सके, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सके, लोगों का कल्याण भी कार्य कर सके, इसलिए वो यज्ञ की आगा नहीं कर रहे थे। तो उस यज्ञ में सहायता करने के लिए देवता लोग भी आए थे। तो देवराज इंद्र, वरुण, यमराज, ये सब लोग कश्यप जी की सेवा कर रहे थे, वॉलेंटरी सेवा, वॉलेंटियर्स, मतलब वॉलेंटियर कुछ ना कुछ लाते थे, कुछ सहायता करते थे। तो कश्यप जी ने देवराज इंद्र को काम लगाया था समीधा लाने में। समीधा अर्थात वो यज्ञ में जो यज्ञ की जो लकड़ियां होती है, फायरवुड जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको समीधा कहते हैं। यज्ञ की जो लकड़ी होती है उसको समीधा कहते हैं। तो समीधा लाने के लिए इंद्र को भेजा था। तो उसी कार्य में ये बाद के ऋषि भी लगे हुए थे, जो वाल के लिए ऋषि जो वृक्ष की शाखा पे बैठे हुए थे, वो पहले की बात है। तो वो भी कार्य करते। अभी इंद्र तो बहुत विशाल है, इंद्र भी अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं, छोटे बड़े और जैसा भी चाहे, लेकिन है बड़े विशाल, बहुत शक्तिशाली है इंद्र। इंद्र का एक नाम शतक्रतु है। क्या है? शतक्रतु। इंद्र का एक नाम शतक्रतु है। भागवतम पढ़ते आप लोग शतक्रतु क्यों कह रहे हैं इंद्र को? क्योंकि जो राजा एक ही जीवन में 100 अश्व यज्ञ करता है वो देवताओं का राजा इंद्र बनता है। शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ, इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। जैसे हम लोग कई बार नाम का शॉर्टनेम नहीं बना लेते, जैसे मेरा नाम है जय रामदास तो मुझे जेडी बोलते हैं, तो वैसे ही इंद्र का भी एक शॉर्टनेम है, शतक्रतु तो बोला ना, तो इंद्र का भी शॉर्टनेम बनाया है, छोटा नाम बनाया है शक्र। शत का श और क्रतु का क्र, इंद्र का एक नाम शक्र है, शतक्रतु का शक्र। तो देवराज इंद्र बहुत ही बड़ा लकड़ियों का पहाड़ लेकर जा रहे थे समीधा के लिए, कश्यप के यज्ञ के लिए। आप ही बड़े घमंड से चल रहे थे, मतलब ऐसे ही उठा लिया स्टाइल से चल रहे थे इंद्र। और उन्होंने रास्ते में उनके अंगूठा के जो मध्य भाग होता है उतनी साइज के छोटे छोटे बाल के लिए ऋषि देखे, बाल के लिए ऋषि की साइज इंद्र के अंगूठे के मध्य भाग जो होता है उतनी साइज के लिए। और वह शारीरिक तौर पर इतने कमजोर थे बाल के ऋषि, कुछ खाते नहीं थे, तपस्या करते थे हमेशा। तो गोकुर होता है, गोकुर जैसे गाय यदि कीचड़ में चलती है तो उसके निशान पड़ जाते ना, उसमें जो पानी भर जाता है, गोकुर में पानी भर जाए तो कोई भी बच्चा लांग सकता है, उसको लांग के जा सकता है। तो बाल के ऋषि गोकुर में भरा हुआ पानी भी नहीं लांग सकते, उसको भी पार नहीं कर सकते, इतने कमजोर थे शारीरिक तौर से। तो बहुत सारे बाल के ऋषि मिलकर एक छोटी सी टहनी लेके जा रहे थे, छोटा सा एक किलखा लेके जा रहे थे इंद्र के सामने। तो इंद्र को देखकर हंसी आ गई, ये देखो ये मैं इतना पहाड़ उठा के लेके जा रहे हैं, छोटी सी टहनी लेके जा रहे हैं। तो इंद्र ने हंसी कर दी, उनका उपहास कर दिया, मजाक उड़ाई इन ऋषियों के, बाल के ऋषियों के। तो इंद्र आ गया क्रोध, बोले तुम इतना घमंड करते हो। बाल के ऋषियों ने संकल्प किया, बोले हम अपनी तपस्या से एक दूसरा इंद्र पैदा करेंगे। इन्होंने अग्नि के सामने संकल्प लिया मंत्रोच्चार करके, एक दूसरा इंद्र पैदा होना चाहिए, देवताओं का इंद्र, जो इस इंद्र से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, ऐसा उन्होंने संकल्प कर लिया। और इनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये साधारण लोग नहीं है। तो ये बात सुनकर जो कश्यप इंद्र जो थे कश्यप जी के पास गए, और फिर कश्यप जी उनके पास गए बाल के ऋषि के पास, बोला कि देखिए ये ब्रह्मा जी के आदेश से इंद्र काम करें, पुरंदर अपना, पुरंदर हमारे इंद्र का नाम है, बोले कि ब्रह्मा जी के आदेश से पुरंदर इंद्र बने हुए हैं, तो फिर इस व्यवस्था में बाधा पड़ेगी और आपका भी संकल्प व्यर्थ नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ बीच का मार्ग होना चाहिए। तो कश्यप ने बताया कि बालक के ऋषि को कि आप ही तो दूसरा इंद्र पैदा करना चाहते हैं, वो पक्षियों का इंद्र हो, देवताओं का नहीं। बालक के ऋषि कुछ सोचने लगे, बोले ठीक है, बोले कश्यप अभी वैसे भी तुम पुत्र प्राप्त के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो हम ये जो दूसरा घर पैदा करना चाहते हैं वो तुम्हारा पुत्र हो। तो कश्यप ने उसको स्वीकार कर लिया था। उसके बाद उन्होंने अपने पत्नियों को आशीर्वाद दिया था, उन्होंने बताया था, तो ये बात पूरी बता दी। तो ये जो गरुड़ है वास्तव में ये वही है जो इंद्र ने बाल की ऋषि का जो अपराध किया था, और बाल क्रिया ने अपने तपस्या के बल से जो दूसरा इंद्र पैदा किया था अर्थात द्वंद्व पक्षियों में इंद्र, उसके बाद उसका वरण अभिषेक हुआ था। ये जो गरुड़ है उसका पक्षियों के इंद्र के रूप में उसका अभिषेक वगैरह हुआ था। तो ये पक्षियों का इंद्र है, पक्षियों का राजा। कभी बृहस्पति ने बता के तुम्हारे अपराध का फल है ये। तो इंद्र को बात याद आई, हाँ ऐसा हुआ था। तो इंद्र फिर अपने सब देव सेना को चौकन्ना कर दिया, अलर्ट बोले हाई हाई अलर्ट रेड अलर्ट, सब लोग अलर्ट हो जाओ, गरुड़ जी आ रहे हैं और हमारे अमृत चुराने के लिए आ रहे हैं और आप सबको खत्म कर सकते हैं, वो इतनी शक्तिशाली है। तो सब देवता लोग अपने अपने दस्ताने पहन लिए, हाथों में अच्छे अच्छे गहनों से बने हुए दस्ताने पहन लिए, फिर अपने अपने आयुध को सब चमकाया, तलवार और परी और क्या क्या पट्टेश, उनके तो अस्त्र ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, दिव्य है सब, उनके सब तैयार हो गए। और देवराज इंद्र भी, देवराज इंद्र का कौन सा वज्र, वो भी लेकर तैनात हो गए, लाने दो अभी गरुड़ को। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी के आते ही सबसे पहले क्या हुआ कि वो तो सीधा गए उसी निशान में जहां अमृत को बचा के रखा था, उस अमृत की सुरक्षा में सभी तैनात था विश्वकर्मा, विश्वकर्मा तैनात थे। तो गरुड़ जी और विश्वकर्मा के बीच में दोगड़ युद्ध हुआ, लेकिन विश्वकर्मा उनके सामने टिक नहीं पाए। उनकी चौंच, गरुड़ के हथियार कौन कौन से हैं, गरुड़ के तीन हथियार, एक उनके चौंच, उनके पंजे और उनके नाखून, और चौथा उनके विंग्स, उनके पंख, ये उनके अस्त्र शस्त्र, बस इसके अलावा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं गरुड़ के पास, इतना काफी है। तो ये शत विक्षत हो गए, हार गए, विश्वकर्मा उनके सामने टिक नहीं पाए, चले गए वहां। उसके बाद गरुड़ जी गए जहां बहुत सारी सेना खड़ी थी, सब लोग आए, गरुड़ को घेर लिया देव सेना ने आकर। गरुड़ जी ने क्या किया, बहुत ही जोर से अपने पंख खिलाए और वहां धूल धूल कर दी, इतनी धूल की कोई देख नहीं पाता, इतनी धूल हो गई वहां। तो इंद्र ने फिर वायु को आदेश दिया कि तुम जरा ठीक कर दो इसको, सीन क्लियर कर दो एकदम, ताकि सब लोग देख पाए गरुड़ को। तो वायु ने आया, सब हटा दिया वहां से, सब धूल हटा दी वहां से, तो गरुड़ जी स्पष्ट दिखाई दे। फिर सब ने अटैक करना शुरू किया, देव सेना ने पूरी अपनी शक्ति लगा के गरुड़ पर अटैक किया, अपने मिसाइल छोड़े सब जो भी है, पट्टीश, फिर अलग अलग प्रकार के उनके तलवार बाण जो भी है। तो गरुड़ को ये सब को कुछ पीड़ा नहीं होती, उनका शरीर बड़ा विशाल था, तो ये सब उनको छोटे मोटे चीटी मकोड़े जैसे लगते। फिर वो हवा में थोड़े ऊपर उड़े, फिर सीधा देवताओं के सर पे गए और सीधा मिसाइल की तरह उड़ते हुए आए नीचे, और इन सब एक ही बार में अपने पंख से और अपने चौंच से लाखों की संख्या में धराशायी कर दिया देव सैनिक को, कितने सारे मारे गए और कुछ रफुचक्कर हो गए, भाग गए अलग अलग दिशाओं में भाग गए। फिर उनके सामने यक्ष आए युद्ध करने के लिए, यक्ष कुबेर की, कुबेर का गण, कुबेर के गण में होते हैं यक्ष और राक्षस। यक्ष बहुत ही प्रबल योद्धा होते हैं, बहुत शक्तिशाली योद्धा होते हैं, ऐसे नौ यक्ष आए गरुड़ के सामने युद्ध करने के लिए, गरुड़ ने खत्म कर दिया, नौ के नौ खत्म कर दिया मार डाला ऐसे करके। फिर गरुड़ जी आगे गए और उस जगह पहुंच गए जहां अमृत रखा गया था, अमृत को बचाने के लिए वहां यंत्र की व्यवस्था की गई थी। एक तो सबसे पहले वहां वो जिस जगह पर यंत्र था उसके बाहर, उस चेंबर के बाहर बहुत ऊंची अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी, वो आग के द्वारा रक्षित था। तो सबसे पहले गरुड़ तो गए पलवर में नदी के पास और अपने शरीर में 8100 मुख पकड़ किए और पूरा नदी का पानी पी लिया। उस जगह पे आज अमृत था, देखा कि वहां तो अग्नि जल रही है, ऊंची ऊंची ज्वालाएं हैं, तो नदी के पास गए, 8000 मुख प्रकट किए, पूरा पानी पी लिया और आकर यहां उदेड़ दिया आग बुझ गई एक सेकंड में। फिर देखा गरुड़ जी ने देखा कि वहां एक दो चक्र घूम रहे थे, और उन दो चक्रों के अंदर, उधर दो चक्रों के नीचे दो चक्र थे, उसके एक टेबल पे जूस दिया जहां ऐसे अमृत रखा गया, उसके नीचे दो सर्प थे, सांप थे। तो गरुड़ ने सबसे पहले क्या हुआ कि अपने साई को चोटी कर ली, क्योंकि ये जो चक्र थे उसमें तो बड़ा आदमी बड़ा व्यक्ति जा नहीं सकता, वो पिस जाएगा, और छोटे से हो गए, और वो दो चक्र के बीच में क्लियरेंस होता है, यदि आप इंजीनियरिंग थोड़ा जानते हैं, दो चक्र का जब मैशिंग होता है तो थोड़ा सा क्लियरेंस रहता है, तो क्लियरेंस में से गरुड़ घुस गए, छोटा साइज बना के अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद थोड़ा शरीर का बड़ा किया और सबसे पहले ये दो सर्प को मार डाला। ये दो सर्प कैसे थे कि आंख भी बंद नहीं करते थे और उनकी आंखों में हमेशा विष भरा रहता था, वो देखने मात्र से विषाग्नि से जला देते थे किसी को भी। तो इनको बीच में से काट डाला गरुड़ ने, अपनी चोंच से उसको मार डाला, खत्म कर दिया। फिर अमृत हाथ में ले लिया और फिर अंदर से अपने साइज को बढ़ा के वो जो यंत्र था मशीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसके मशीन तोड़ के बाहर आ गया। ये काम करने में उसको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई, उसी समय में अमृत लेकर वहां से निकल गए। अभी एक ही योद्धा बचे थे इंद्र खुद। गरुड़ ने देखा जब अमृत लेकर जा रहे थे तो इंद्र वहां देखा कि वज्र लेकर खड़े थे और फिर उन्होंने वज्रघात किया गरुड़ के ऊपर, तो गरुड़ फंस गए। गरुड़ बोले इंद्र तुमने ये जो वज्रपात किया है मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे ऊपर कोई धूल फेंका हो, लेकिन चूंकि ये दधीची मुनि का है, दधीची मुनि के हड्डी से बना है, मैं उनका अपमान नहीं करूंगा, है ना। इंद्र का जो वज्र है किससे बना है, दधीची मुनि का जो रिपकेज, रिपकेज पता ना आपको, जहां अंदर फेफड़े रहते हैं, जो रिपकेज उससे यदि ये इंद्र का वज्र बना था दधीची मुनि की हड्डी से, तो बोले मैं दधीची मुनि का और उनके अस्त्र का अपमान नहीं करूंगा, तो तुमने मेरे ऊपर वज्रघात किया है, तुम्हें उसका थोड़ा सा फल मिलना चाहिए, मैं अपने एक पांच से एक छोटा सा पर्ण उनके गिरा देता हूँ, तुम उसे खुश हो जाओ। तो नीचे एक पर्ण गिरा, ना फैदर होता है ना, फैदर पक्षियों के फैदर होते हैं, उसमें से एक पर्ण नीचे गिर जाता है और वहां एकदम विशाल था वो भी एक फैदर भी, तो मनुष्य में जहां गिरा तो सब लोग देखकर तो खुश हो गए, तो इतना सुंदर पंख, इतना सुंदर पर्ण, तो सब लोगों ने उसकी उसका नामकरण किया सुपर्ण। इसलिए गरुड़ का एक नाम है सुपर्ण, क्योंकि उनके पंख बड़े सुंदर। और गरुड़ का एक नामकरण बाल के ऋषि ने भी किया था, गुरु आदाय उड्डयन, क्योंकि वो जो जो शाखा जो लेकर उड़े थे ना, बहुत विशाल शाखा लेकर उड़े थे, इसलिए उनका नाम गरुड़ हुआ। गुरु आदाय उड्डयन, इसलिए गुरु का गरुड़, इस प्रकार का नाम उनका बालक ने ऋषि ने नाम दिया था गुरु को इस प्रकार से। तो एक पर्ण, एक पंख गिरा, एक पर्ण गिरा, उसे उसका नाम सुपर्ण हो गया। तो फिर ये बात उन्होंने देखी कि ये तो उसको तो वज्रघात से कुछ असर नहीं होता इसको, तो फिर रख दिया अपने अंदर वज्र, बोले कुछ काम करेंगे इसके सामने, काम नहीं करेगा। तो फिर वो अभी समझ गए कि इनके सामने अपनी चलने वाली नहीं है, इसलिए फिर उनको प्रणाम किया गरुड़ जी को, बोले कि आपका ये कार्य महान है, मैं आपसे मैत्री चाहता हूं, आप मेरी मैत्री स्वीकार करिए। तो गरुड़ जी बोले ठीक है, हम दोनों की मैत्री हो सकती है। बोले तो मुझसे क्या चाहते हो, गरुड़ जी इंद्र से पूछ रहे कि मुझसे क्या चाहते हो। इंद्र कह रहे हैं कि आप जिसके लिए ये अमृत लेकर जा रहे हैं उसके लिए उसको आप दे देंगे तो हमारा हित करेगा, वो हमारा अच्छा नहीं करेगा, वो हमारे खिलाफ हो जाएगा, इसलिए आप उनको ये अमृत मत दो। गरुड़ जी बोले ठीक है, तुमने ये मित्र होकर मुझसे तुम विनती की है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं इस अमृत को लेकर जाऊंगा, इसको मैं स्वयं नहीं पीऊंगा, उसको पीने भी नहीं दूंगा, लेकिन वहां रखूंगा उसके सामने, फिर वहां से उठा काम तुम्हारा, क्योंकि मैंने तो मुझे भी काम करना है अपना, लेकिन वहां में जाकर फिर तुम उठा लेना, मैं उसको पीने के लिए नहीं दूंगा, मैं उसको दे दूंगा, फिर तुम उठा के ले जाना वहां से। इंद्र खुश थे उसे, ठीक है। तो इंद्र ने बोला कि अभी तुम उससे कुछ वर मांगो। तो गरुड़ ने बोला कि ये सर्प हमेशा परेशान करते रहते हैं मुझे, उन्होंने मेरे मेरी माँ को भी बहुत परेशान किया है, और वैसे मुझे खाने की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सर्प मेरी मेरा भोजन बन जाए। इंद्र ने बोला ठीक है एवं अस्तु। तो तब से गरुड़ है वो सर्प भोजी है, वो सर्प को खाते हैं, इसलिए सर्प हमेशा गरुड़ से डरते हैं। यानी गोवा से कहीं सांप दिखाई दे तो जोर से गरुड़ गरुड़ चिल्लाना चाहिए, सांप भाग जाएगा। तो फिर दोनों में ऐसे डील हो गया, ठीक है। और गरुड़ जी फिर आगे गए और इंद्र ने इंद्र को इस बात का अनुमोदन श्री हरि ने भी दिया, विष्णु ने भी दिया, अमृत की बात ठीक है ऐसा कर सकते हो। तो गरुड़ जी अमृत लेकर गए वहां, इसके बाद गए जहां कद्रु और उनके बेटे बैठे थे सब अमृत की प्रतीक्षा करते हुए। वहां उन्होंने एक कुश के आसन पर अमृत का कलश रख दिया सबों के सामने, गरुड़ ने। और सबों को क्या बोला कि आप लोग ऐसे ही इसको पियोगे, थोड़ा स्नान वान करके आओ, थोड़ा शुद्ध होके आओ, कुछ संध्या वंदन जप करके आओ, फिर उसको पीना है, अमृत तो ऑर्डिनरी चीज थोड़ी है। तो सर्प ने बात तो जज गई तुम्हारी, सर्प लोग गए, कद्रू भी गई, स्नान इत्यादि करने चले गए। और उससे पहले गुरु अरे ठहरो ठहरो ठहरो, मैंने अमृत ला कर रख दिया यहां, अभी मेरी मां वो दासी से मुक्त हो गई, ये हम दोनों की शर्त हुई थी, उससे पहले दासी से मुक्त करो। सर को बोला ठीक है ना कि अमृत आ गया तो अपनी मां को लेकर जा सकते हो। गरुड़ जी तुरंत ही अपनी मां विनिता को लेकर वहां से चंपक हो गए, और ये लोग गए स्नान करने के लिए, और पीछे से कौन आए, इंद्र। इंद्र गरुड़ का अमृत का कलश उठा के वहां से चल दिए, वो चंपक हो गया वहां से, अमृत भी गया दासी भी गई। तो सब वापस लौट कर आए, देखा वहां से अमृत गायब है जो कुछ के आसन पर रखा था। फिर इनके होश ठिकाने आए, चलो बोले हम लोगों ने कपटपूर्ण कार्य किया था। कपट क्या किया था, काले बाल बन के उच्चे सभा की पूछ में घुस गए थे, ये कपट किया था। बोला कि हमारे कपट का परिणाम है ये, हमें ठीक फल मिला, ऐसे करके उन्होंने तसल्ली कर ली। फिर सोचा कि कुछ के ऊपर रखा था तो शायद थोड़ा बहुत अमृत के बूंद गिरे होंगे शायद, क्या पता, ऐसे करके वो अपनी जीभ से चाटने लगे, सब लोग चाटने लगे। तो क्या हुआ, कुश का जो तिनका होता है वो बहुत तीक्ष्ण होता है, तेज होता है, उसकी धार बहुत तेज होती है, उस कारण से सर्पों की जो जिह्वा थी उसके दो भाग हो गए, क्योंकि उन्होंने कुश को चाटा ना तीक्ष्ण धार थी, तो सर्प की जिह्वा के उसके दो भाग हो गए। तब से हम देखते हैं कि सर्पों की जो जिह्वा होती है, जीभ होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, है कि नहीं। सर्पों की जीभ आप लोगों ने देखी होगी, दो पार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे बाहर आती हो। तो तब से जो सर में द्विजिह्न हो गए, दो जीव वाले हो गए। फिर गरुड़ जी गए, अपनी मां को दास से छुड़ा लिया, श्रीहरि से मुलाकात हुई, श्रीहरि ने उनकी बहुत प्रशंसा की, और गरुड़ ने फिर उनसे बात, श्रीहरि ने बोला कि तुम मुझसे कुछ बार मांगो, क्योंकि उन्होंने देखा, श्रीहरि ने देखा कि अमृत लेके कह रहे थे उसको मिश्रित नहीं किया, खुद पान नहीं किया। तो श्रीहरि ने बोला कि तुम कुछ बार मांगो, गरुड़ ने बोला कि एक तो मैं बिना अमृत पान के ही अमर हो जाऊं, हजार अमर हो जाऊं। विष्णु ने बोला ठीक है तथास्तु। दूसरा बार ये विष्णु ने बोला और एक बार मांगो, तो गरुड़ बोला कि हमेशा मैं आपके ऊपर रहूं। अब बोलेंगे ये कैसा बड़ा अजीब पर है ये। तो हरि ने बोला एवं अस्तु, तुम हमेशा मेरी ध्वज में विराजमान रहोगे। श्रीहरि जब भी युद्ध के लिए जाते हैं तो उनके ध्वज पे हमेशा गरुड़ रहते हैं, इसलिए श्रीहरि का एक नाम है गरुड़ ध्वज। आप देखें कृष्ण मुख में भी जो इसके साथ युद्ध होता है, नरकासुर के साथ युद्ध होता है, अलग अलग जगह पे भगवान युद्ध करने के लिए जाते हैं अपना रथ लेकर, तो उनकी ध्वजा का वर्णन है गरुड़ ध्वज, गरुड़ का हमेशा गरुड़ वहां विराजमान होते हैं। और फिर गरुड़ ने विष्णु से बोला, अभी आप कुछ वर मांगे मुझसे, विष्णु ने बोला तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ बोले ठीक है एवं अस्तु। तब से गरुड़ जो है वो विष्णु के वाहन है। तो इस प्रकार से और फिर गरुड़ अपनी शक्ति का वर्णन इंद्र के सामने भी करते हैं, इंद्र बताते हैं, इंद्र पूछते हैं उनसे क्या अपनी शक्ति का थोड़ा वर्णन कीजिए। गरुड़ बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति का वर्णन किसी को नहीं करना चाहिए, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मित्र होकर कुछ मैं बताता हूं। गरुड़ इतने विशाल है, इतने शक्तिशाली है, गरुड़ क्या है कि मेरे केवल एक पंख पर मैं पूरी पृथ्वी को उठा सकता हूं, उस पृथ्वी पर बैठे हुए तुमको तो मैं भी उठा सकता हूं। इतना ही नहीं, मैं 14 भुवनों को भी उठा सकता हूं अपनी एक पंख पर। अरे कोई अद्भुत बात नहीं, क्यों? क्योंकि गरुड़ किसको उठाते हैं? विष्णु को उठाते हैं। गरुड़ जी विष्णु को ही उठा रहे हैं तो फिर 14 भुवन उठाने की बात कौन सी बड़ी है उनके लिए? कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये गरुड़ की महान शक्ति है, ये गरुड़ का महान चरित्र है जो महाभारत में वर्णन किया है। फिर उग्र शिवाजी उसके फलश्रुति देते हैं कि जो मनुष्य सदा युक्त होकर गरुड़ का उपासना तो सुनता है उसकी भक्ति श्री हरि के चरण में सुदृढ़ होती है, उसको उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, ऊर्ध्व गति होती है उसकी सत्वगुण में, उद्धव की सत्वस्था उसके हृदय में सत्वगुण की वृद्धि होती है और क्रमशः ऊपर की ओर उसकी उसकी गति होती है और अंततः वो भगवान के धाम में जाता है। तो ये गरुड़ का महान चरित्र, महान पराक्रम है। हरे कृष्ण।